اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى درود بھیجی محمد علیہ یہ ایک انتہائی عجیب امر ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں جو نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے وہ بہت ہی مسرتوں کے ساتھ ہوتی ہے، بہت ہی شادمانیوں کے ساتھ ہوتی ہے، بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو اس کا آغاز ہی رونے سے، اس کا آغاز ہی گریا کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ ادھر محرم کا چاند اپنی غمزدہ صورت یہ نمودار ہوتا ہے، ادھر مومن کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، عورتیں اپنی چوڑیاں اتار پھینکتی ہیں، خوشنما اور عمدہ لباس جو ہے وہ رکھ دیے جاتے ہیں، مسکراہٹیں چھن جاتی ہیں، اور سال کا آغاز ان شخصیات کے مصائب کے ذکر سے شروع ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنا خون دے کر اس شجر اسلام کو پروان چڑھایا۔ اور صرف انسان یہ نہیں بلکہ ہر مخلوق نے کربلا والوں پر گریہ کیا۔ شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام ملائکہ نے اور تمام انبیاء نے، حضرت امام حسین کے بعد تمام ملائکہ نے اور تمام انبیاء نے پیغمبر اسلام اور امیر المومنین سے تعزیت کی تھی، جو کہ باقاعدہ زیارت ناحیہ کا جملہ بھی۔ اور ہمارے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو آسمان خون کی طرح سے، آسمان سے خون برسا تھا اور آسمان سے سرخ مٹی کی بھی جو ہے وہ بارش ہوئی تھی۔ اور چھٹے امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قتل امام حسین کے بعد ایک سال تک آسمان کے اوپر سرخی رہی تھی، جو کہ باقاعدہ کامل الزیارات جو ہماری بڑی مشہور کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح سے یہ ینابیع المودہ میں ابن سیرین جو اہل سنت کے بڑے علماء میں سے ہیں، انہوں نے ان کے حوالے سے ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ شہادت امام حسین سے قبل آسمان پر سرخی نہیں ہوا کرتی تھی، اور امام حسین کی شہادت کے بعد یہ جو آسمان پر جو شفق کی سرخی کہا جاتا ہے اس کا آغاز ہوا۔ اور صاحب دلائل النبوہ انہوں نے تو یہ بات بھی لکھی ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو اونٹ، جو بھی اونٹ اس دن پانی کے اندر اپنے منہ کو ڈالتا تھا پانی پینے کے لیے، تو وہ پانی خون سے سرخ ہو جاتا تھا۔ اور مسلمانوں کے بڑے عالم ابن جوزی نے یہاں تک بات لکھی کہ شہادت امام حسین کے بعد 3 دن تک آسمان پر تاریکی چھائی رہی۔ اور یہ بات بھی لکھی کہ بیت المقدس یا بیت المقدس میں جو پتھر بھی اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون برآمد ہوتا تھا۔ اور چھٹے امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ 4000 فرشتے جو امام حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت کے لیے آئے تھے اور امام نے مدد لینے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، تو پھر یہ فرشتے واپس نہیں گئے اور وہ آج تک کربلا میں گریہ ازاری کرتے ہیں۔ باقاعدہ ابن قولویہ نے بھی اس بات کو خاص طور پر لکھا ہے۔ अच्छा, अब जो कि हजरत उम्मे सलमा अलैहि सलातो व सलाम उम्मुल मोमिनीन दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले में। उन्होंने भी जिन औरतों के नोहे का तस्करा किया, हम क्या बात बता रहे हैं कि दुनिया के हर मखलूक ने इमाम हुसैन की शहादत पर गिरिया उजारी की है और आजादारी की, और इमाम हुसैन इमाम जमाना अलैहि सलाम ने जियारत नाहिया में, अल्लाहुम सल्ली अला मुहम्मद में, आसमानों तक में जो आजादारी हुई है उसका भी तस्करा किया कि हूराने जन्नत ने अपने गालों पर तमाचे मारे थे और तमाम आसमान वालों ने गिरिया उजारी और आजादारी की थी। जन्नत और उसके मुहाफिजीन ने आजादारी और गिरिया उजारी की थी। पहाड़ों ने, समंदर की मछलियों ने, बहिश्तो गिलमान ने, खाने काबा ने, मुकाम इब्राहिम ने, मशरुल हराम ने, हरम बैतुल्ला ने और उसके अतराफ सब ने गिरिया उजारी की, और जहन्नुम तक ने गिरिया किया और कातिलाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लानत की। हत्ता कि जितने चरिंद और परिंद, उनमें जैसे कहा जाता है कि कबूतर, रोजे आशूरा कबूतर ने कातिलाने इमाम हुसैन पर लानत की। यही वजह है कि छठे इमाम ने कबूतर को घरों में पालने की बहुत ज्यादा ताकीद की। और बहुत सारे परिंदे देखिए इस तरह के हैं कि जो कि आमतौर पर लोग उनको किसी खास वजह से, मसलन जैसे उल्लू है, उसको कुछ कहते हैं कि भाई यानी हिमाकत का एक उसको बना दिया गया जबकि दूर दूर से उसका वास्ता नहीं, और शायद बहुत सी रिवायात की वजह से ऐसा किया गया हो, इस किस्म का कॉन्सेप्ट बनाया गया हो। और इसी तरह कौवे के मुतालिक भी रिवायात में यहां तक मिलती है, चौथे इमामी जुमला इरशाद फरमाते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए तो कौवे ने उनकी शहादत के बाद उनके खून से अपने आप को उनका खून अपने जिस्म पर मला और बहुत गिरिया किया। उसके बाद वो कौवा उड़ता हुआ मदीने गया और हजरत फातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा के घर की दीवार पर, अल्लाहुम सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद, जाकर बैठ गया और वहां शदीद वहां बैठा और जिनको देखकर हजरत फातिमा सुगरा ने शदीद गिरिया किया। माँ बाद करबला, उसके अंदर पूरी रिवायत इस सिलसिले में मौजूद है। और परिंदों में जो सबसे ज्यादा दुख हुआ है इमाम हुसैन की शहादत का, वो रिवायतों में कि सबसे ज्यादा शिद्दत के साथ जो दुख महसूस किया जिस परिंदे ने, वो उल्लू है। इसके मुतालिक बहुत गलत कॉन्सेप्ट शायद बनाया गया है। हमारे आठवें इमाम इमाम अली रजा अलैहि सलातो वसलाम इरशाद फरमाते हैं कि रसूल खुदा के जमाने में ये घरों में और मोहल्लों में जमीन के ऊपर रहा करता था, और इंसान जब कहीं खाना खाते थे बैठकर तो ये उनके पास आकर बैठ जाता था, वो इसको कुछ खाना वगैरह डाल देते थे और ये खाकर फिर उड़ जाता था। लेकिन इमाम हुसैन की शहादत के बाद इसने आबादियों को छोड़कर वीराने का रुख अख्तियार किया, आठवें इमाम फरमाते, और पहाड़ों और सहराओं का रुख कर लिया और वहीं अपना बसेरा बसा लिया इसने, और कहा कि ये इंसान कितनी बदतरीन मखलूक है कि जिसने फर्जंदे जहरा को शहीद कर दिया, अब मुझे इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा। तो आबादियों को छोड़कर उल्लू ने वीराने का रुख किया, और बाकायदा कामिलुज़ ज़ियारात में इब्ने कौलविया ने इस रिवायत को जिक्र किया है। और छठे इमाम ये जुमला भी इरशाद फरमाते हैं कि उल्लू पूरे दिन रोजा रखता है और रात आने के बाद हुक्म खुदा से इफ्तार करता है, और रात से लेकर सुबह तक ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर नोह और मातम करता बाकायदा। इसी तरीके से बहुत सारे हैवानात का तस्करा भी मुहद्दिस नूरी ने किया, और मुहद्दिस नूरी ने आखुन मुल्ला जैनुल आबिदीन जो कि कालिम दीन थे, उनके हवाले से एक वाकया लिखा है कि वो अपने भांजों और कुछ जायरीन के हमरा जब ज़ियारत इमाम रिजा अलैहिस्सलाम से वापस आ रहे थे तो हमदान के करीब पहाड़ों में उन्होंने खेमे नसब किए, तो वहां उन्होंने देखा कि रात के वक्त एक बहुत ही जईफ बूढ़ा है जो कि नमाजें पढ़ रहा है। ये उसके पास गए तो उस बूढ़े ने कहा कि मैं हर साल यहां पर आता हूं और एक दफा मैं यहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि हर किस्म के जानवर, जो ऐसे जानवर के जिनका एक जगह पर जमा होना भी नामुमकिन, मसलन शेर और हिरन, मसलन शेर और बकरी, मसलन भेड़िए, ये तमाम के तमाम हर किस्म के जानवर यहां पर आकर जमा हैं। मैं दूर से पहाड़ पे बैठकर जो है सारा मंजर देख रहा था कि सारे जानवर यहां पर आकर जमा हुए और वो एक जगह जमा होकर आसमान की तरफ रुख कर करके बड़े अजीब तरीके से मुंह से आवाजें निकाल रहे थे, जैसे गिरिया उजारी कर रहे। कह रहे हैं कि मुझे फौरन दिमाग में याद आया कि आज तो शब आशूर, बस ये दिमाग में आना था कि मैंने अपना मामा उतार के फेंका और मैं दौड़ता हुआ उन जानवरों के पास गया, उन जानवरों जो दायरा बनाए हुए थे मुझे रास्ता दिया, मैं उनके दरमियान में गया और बहुत गिरिया उजारी की और उन जानवर भी जो थे अपना मुंह को बार बार जमीन के ऊपर मारते थे। और यहां तक कि सुबह तक ये सिलसिला चला और उसके बाद जानवर फिर मुंतशिर हो गए, मुतफर्रिक हो गए और कहने लगा, वो उस बूढ़े ने बताया कि मैं 18 साल से यहां पर इसी तरह से आ रहा हूं, अगर मुझे साल के किसी तारीख या महीने में शुबा होता है तो मैं शब आशूर इस जगह आकर जानवरों को की आजादारी को देखकर अब सही तारीख का तायुन कर लेता हूं। तो सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरी कायनात इस तरह से गिरिया उजारी कर रही है। और इस वाकये को बाकायदा जो है मुहद्दिस नूरी ने अपनी किताब के अंदर नकल भी किया। अच्छा, पूरी कायनात में देखिए कि मुकल्लफ जो है फकत इंसान, सिर्फ इंसान। सवाल यह पैदा होता है कि इतनी अजीम कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों दी? क्या फकत इस वजह से दी है कि मैं शहीद हो जाऊं और उसके बाद फिर लोग जो हैं मुझ पर गिरिया उजारी करें, मेरा नाम लें? इमाम ने आखिर इतनी जबरदस्त कुर्बानी क्यों पेश की? पूरे खानवादे को इस तरह से क्यों कटवा दिया? ये दिमाग में एक सवाल पैदा होता, बेहतर है कि इस सवाल का जवाब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही से ले लें। तो इमाम हुसैन ने इसका जवाब दिया कि मेरा यह कयाम ना किसी बड़ाई के लिए है, ना सरकशी और फसाद और ना जुल्म के लिए है। मेरे कयाम का मकसद फकत यह है कि अपने जद पैगंबर इस्लाम और उनकी उम्मत की, अपने जद की उम्मत की इस्लाह करूं और मैं चाहता हूं कि अमरे बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर करूं और अपने जद रसूलल्लाह और अपने वालिद अली इब्ने अबी तालिब की सीरत पर चलूं। यानी ये तमाम का तमाम जो कुर्बानियां इमाम ने पेश की हैं ये सिर्फ और सिर्फ अमरे बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर या नहीं अनिल मुनकर की इसको परवान चढ़ाने के लिए, अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए सब कुर्बानियां पेश की। और फिर और कौन सा सबूत आपको चाहिए जबकि इमाम हुसैन ने खुद एक सबूत आपके सामने पेश कर दिया। और दूसरा जो हवाला है वो ज़ियारत अरबईन का है कि इमाम ने खुद फरमाया, छठे इमाम के हवाले से जो ज़ियारत अरबईन में भी है कि वबज़ला महजतहु फीका लियस्तनक़िज़ा इबादका मिनल जिहालति व हैरति ज़लालति। इमाम हुसैन ने अपने खूने अपना खून और अपना जिगर तेरी राह में निसार किया ताकि तेरे बंदों को जिहालत और गुमराही की हैरत और सरगर्दानी से निजात दिला सके। यानी इमाम हुसैन का दूसरा मकसद जो ये पता चला जो खुद ज़ियारत अरबईन के अंदर है कि लोगों को जिहालत से और गुमराही से निजात दिलाना। क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह बात खुद नहीं की कि परवरदिगार जो हमने कयाम किया है ये किसी इक्तदार और जाह हशम के लिए नहीं किया? यानी जिस तरीके से आम बादशाह वगैरह जो है वो इक्तदार को हासिल करते हैं और इनकलाबात लेकर आते हैं, इक्तदार को हासिल कर लेते हैं, उसी के जरिए अपने पेट की आग को बुझाते हैं और मालो दौलत वगैरह जमा करते हैं, इस काम के लिए हमने नहीं किया। फिर किस काम के लिए किया? इमाम फरमाते हैं कि दीन के, ताकि दीन के परचम को लोगों के लिए लहराएं। यह है आजादारी का सबसे अहम तरीन मकसद जो कि होना चाहिए। अच्छा, इमाम ने अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर, अमर नहीं, उसके के अंदर जितनी शर्तें पाई जाती हैं इमाम ने तमाम शर्तें पूरी की। आपने जब अमर नहीं के तमाम मसले मसाइल चल रहे थे तो आपने उसके अंदर भी सुना था कि पहला मरहला होता है दिल से जो है बुराई को बुरा समझना, उसके बाद जुबान से अमल करना, उसके बाद जुबान से कहना, और उसके बाद आज़ाव जवारे से रोकना, यहां तक के कत्ल कर देना, कताल करना, ये तक भी उसके अंदर आता है। तो इमाम ने तमाम मराहिल के ऊपर अमल किया और अमलन आशूर के रोज दोनों लश्करों के दरमियान, बहुत कम ये बात पढ़ी जाती है आमतौर पर मजालिस में, जबकि रिवायत में ये बात आई है कि इमाम हुसैन अपने सर पर कुरान को रखकर लाए थे और लोगों को कुरान पर अमल करने की दावत दी थी। अपने सर पर कुरान इमाम ने रखा था। और क्या आप ज़ियारत वारिसा में ये नहीं पढ़ती हैं कि अस्सलामु अलैका या वारिसा आदमा सिफ़तिल्लाह, वारिसा आदमा सिफ़तिल्लाह, और फिर वारिसा नूह नबीअल्लाह और ईसा रूहिल्लाह और मूसा कलीमिल्लाह। तो ये तमाम की तमाम चीजें क्या है? यानी इन अंबिया का वारिस इमाम हुसैन को करार दिया गया। अच्छा, अंबिया का मकसद क्या था आने का? दीन की दावत, दीन की तबलीग, शरीयत की पासदारी, अहकामात खुदा की बजा आवरी, आदिलाना इस्लामी हुकूमतों का कयाम, ये अंबिया के मकासिद में से एक बात थी, बल्कि असल मकसद यही था। अच्छा, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद ही अमरो नहीं, जब इमाम का मकसद ही जहालत और गुमराही से निजात दिलाना है, तो फिर लोगों की जहालत दूर क्यों नहीं हो रही सजादारी के जरिए? जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद ही गुमराही से निजात दिलाना है, तो लोगों की गुमराही सजादारी से दूर क्यों नहीं हो रही? जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सारे अंबिया के वारिस हैं और दीन की दावत और तबलीग के भी वारिस हैं, फिर तबलीग आखिर आजादारी से माइनस क्यों हो गई? जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद अहकामात खुदा की बजावरी है, तो फिर खुतबा को और जाकिरीन को अहकाम इलाही बयान करने से क्यों रोका जाता है? ये अमर नहीं और ये अहकाम, इन पर अमल आखिर कैसे होगा? देखिए, इमाम ने जो कुछ भी कहा है उसको कर भी दिखाया है। देखिए, मसनवी मौलाना रूम में बाकायदा एक हिकायत लिखी है बात को समझाने के लिए, इसको कोई अपने उसका एतराज के हवाले से इस बात को ना सुने। मसनवी मौलाना रूम में उन्होंने एक बड़ी अजीब मिसाल लिखी, कहा कि एक तोता था जो कि अपने मालिक के पिंजरे में कैद था। मालिक ने एक दफा तोते से आगे कहा कि मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूं, वहां के तोतों को तुमको अगर कोई पैगाम देना है तो मुझे बताओ। उसने कहा कि बस जब आप वहां हिंदुस्तान पहुंचे तो जो भी तोते आपको मिले उनसे कहिएगा कि तुम्हारा एक भाई फला मुल्क के अंदर एक पिंजरे के अंदर कैद है, तुम लोग आजाद हो लेकिन वो यहां पर कैद है, बस इतना पैगाम दे देना। अब ये जब ये शख्स हिंदुस्तान गया और वहां उसने तोते उसको एक जगह पे नजर आए, तो उन तोतों के पास गया और पैगाम दिया कि तुम्हारा एक भाई फला जगह पर एक पिंजरे के अंदर कैद है। उसने पैगाम दिया, उसने कहा कि जैसे ही मैंने तोतों को यह बात कही, फौरन सारे तोते फड़फड़ाए और जमीन पर गिरकर मर गए। मैं बड़ा हैरान और परेशान हुआ जब अपने वतन वापस आया और तोते को आकर सारा माजरा सुनाया कि जब मैंने उनको यह बात बताई कि तुम्हारा भाई इस तरह से वहां कैद है, तो वो फड़फड़ाए और गिरकर मर गए। तोते ने भी जब यह बात सुनी तो फौरन पर जो थे वो फड़फड़ाए उसने और पिंजरे के अंदर गिरकर मर गया। अब जो है मालिक ने उसको निकालकर देखा, वाकई मर चुका था, जमीन के ऊपर फेंक दिया उसको। जैसे ही फेंका वो फौरन उड़ता हुआ एक दरख्त के ऊपर जाकर बैठ गया और कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, असल में मैंने अपने जो साथी थे उनको ये पैगाम दिया था कि मैं इस सिलसिले में क्या करूं, मैं यहां पर कैद हूं, तो उन्होंने मेरे भाइयों ने अमल करके ये पैगाम दिया कि मर जाओ ताकि तुमको जिंदगी मिल जाए, और एक अमली सबक दिया कि मुझे बता दिया कि मुझे करना क्या। अब इस मिसाल को तो एक तरफ रखिए, अब बस ये सोचिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको किस तरह बताते कि आपको क्या करना। देखिए, वही हालात हैं, वही आज भी वही गुनाह हैं, वही फिस्को फजूर है, वही माहौल है, वही इस्लाम की पायमाली है, वही जुल्म बर्बरियत है। अब क्या करो? इमाम हुसैन ने कर दिखा दिया कि अमली तौर पर अब तुम्हारा फरीजा क्या है, बुराइयों, गुनाहों और जुल्म के मुकाबले में आवाज बुलंद करना और जितनी अपनी सलाहियत हो उस पूरी सलाहियत को इस्तेमाल कर देना। अब इस काम के लिए यानी गुनाहों से आप लोगों को रोकें, सख्तियां उठाएं, لوگ اگر آپ کو برا بھلا کہیں تو اس کو بھی آپ برداشت کریں، اور بعض اوقات جانوں کی قربانی دینا پڑے تو وہ بھی آپ قربانیاں دیں. امام حسین علیہ السلام اگر یہ قربانیاں نہ دیتے تو ممکن ہی نہیں تھا کہ پیغام صدیاں کراس کر کے آج یہاں تک پہنچ جاتا. اب تک صرف زبانی بات اگر امام کرتے اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوتا تو قول امام کی تو کتنی تفسیریں اور تعویلیں جو ہیں وہ کر دی جاتی. اور امام اگر 100 زبانوں کے اندر بھی اگر یہ پیغام آپ کو دیتے تو ممکن نہیں تھا کہ صدیوں کو پار کرتا ہوا یہ پیغام آج آپ تک پہنچ جاتا، ممکن ہی نہیں تھا. تو امام نے کر کر بتا دیا، اور اس تمام طریقہ کار کو آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ گناہوں اور ظلم کے مقابلے میں کون کون سی حکمت عملی کیسے کیسے انجام دینا ہے. یہی سیرت امام کا ایک سبق کربلا سے ملتا. اچھا دیکھیے، یہ جو امام نے صدائے استغاثہ میدان کربلا میں بلند کی تھی، یہ امام نے کب بلند کی تھی؟ جب سارے انصار مارے جا چکے تھے. اس وقت اس مدد کا ان سے تو تقاضا ہو نہیں سکتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ بعد میں آنے والے افراد سے امام کا یہ تقاضا تھا، یعنی ہم سے امام کا کوئی تقاضا، ہم سے کوئی خاص قسم کی مدد امام کو درکار تھی. اس مدد، یہ مدد کون سی ہے جو امام نے صدائے استغاثہ بلند کر کے آپ سے مانگی تھی؟ اس کی توضیح آپ نے کتنی مجالس کے اندر سنی؟ کتنے ذاکر یا ذاکرہ ایسی ہیں کہ جو اس پر بات کرتی ہیں؟ محدود صرف چند علماء حقہ کے یا چند اچھے ذاکرین یا جو ذاکرات ہماری ماشاءاللہ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، صرف چند ایک کو چھوڑ کر، لیکن کتنے پرسنٹیج ایسے افراد کی ہوگی جو اس مقصد امام حسین پر اور امام کی صدائے استغاثہ کے، اس کا مقصد کیا تھا، امام کو ہم سے کون سی مدد چاہیے، کتنی مجالس کے اندر آپ نے اس بات کو سنا؟ 1% سے بھی مشکل ہے کہ پرسنٹیج زیادہ ہو سکے، اس سے بھی کم. یعنی وہ مقصد جو امام حسین خود بیان کر کے گئے ہیں اس پر مجالس میں کوئی بات نہیں ہوتی. کسی گناہ کی کوئی مذمت ہم عام طور پر زیادہ تر مجالس کے اندر نہیں سنتے. کسی واجب کی کوئی اہمیت کسی مجلس کے اندر الگ سے جو ہے وہ بیان نہیں کی جاتی. نیکیوں کی فضیلتیں عام طور پر مجالس کا عنوان نہیں ہوتی. لوگوں کی جس سے کردار سازی ہو ایسا کوئی عنوان مجالس اعضاء کے اندر نہیں رکھا جاتا. آپ اٹھائیے ذخیرہ مجالس، کتابیں، کیسٹس، ڈی وی ڈیز، سی ڈیز، رینڈملی اٹھائیے اور کہیں سے بھی یا انٹرنیٹ پہ آپ اٹھا کر سننا شروع کریں، ان موضوعات کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی. کن موضوعات پر بات ہوتی ہے؟ جو نان ایشوز ہیں. مثلا ایمان ابو طالب پہ بہت آپ کو بات ہوتی نظر آئے گی. درود بھیجیے محمد والے محمد. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ مجالس ہمارے لیے تھی یا غیروں کے لیے تھی؟ مجالس ہمارے لیے تھی. اب کون وہ بدنصیب شیعہ ہوگا جو ایمان ابو طالب کا قائل نہیں ہوگا؟ ان کے سامنے بار 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 صرف ایمان ابو طالب کو ثابت کرتے رہنا، تحصیلیں حاصل ہوتی ہے عقائد کے اندر. بار بار ایک چیز کا عقیدہ بن جائے تو اس کو بار بار ضرورت نہیں ہوتی کہ ہر محفل میں اور ہر مجلس میں اور ہر درس میں. مثلا ہم جو چیزیں ثابت شدہ ہیں حاضرین پر ان کو بار بار پیش کریں. ہاں اخلاقیات میں ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ لوگوں کی طرف سے اعتراض آ جاتا ہے. اخلاقیات جو یہاں پر پڑھاتے ہیں وہ بہت سی حدیثوں کا بار بار تکرار کرتے ہیں، تو روزانہ ایمان میں ہمارے کمی و زیادتی ہوتی، وہ حدیثیں بار بار سننے کی ضرورت بعض اوقات پیش آتی ہے. قرآن میں بار بار جب ہی اخلاقیات کے موضوع کو بار بار ڈسکس کیا گیا. ہاں عقائد جو ایک دفعہ راسخ ہو جائیں ان کی تبلیغ کی بار بار ضرورت پیش نہیں آتی، ان کے دلائل ہر دفعہ بار بار بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اخلاقیات میں پیش آتی. تو اب دیکھیے، وہی میں نے کہا کہ نان ایشوز پہ بات ہوتی. اب کون ہے جو حضرت ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جو ہے انکار کر رہا ہو لیکن اسی پہ بار بار بات ہوگی؟ مثلا یا مردوں کی مجلس کے اندر وہی بات بار بار آتی ہے کہ کیا نبی ہم جیسا ہو سکتا ہے؟ کتنی دفعہ ایک بات کو سنیں؟ کیا قرآن ہمارے لیے کافی ہے؟ تو دیکھیے اس سے آگے کی بھی کوئی بات ہونی چاہیے، کوئی سماجی موضوع ہو، کوئی اخلاقی موضوع ہو. گھر کے گھر تباہ ہوئے چلے جا رہے ہیں، اخلاقیات لوگوں کے تباہ ہو رہی ہے، کردار لوگوں کے تباہ ہو رہے ہیں، اور تربیت نہ کوئی کر رہا ہے نہ کوئی کرتا نظر آ رہا ہے. کب یہ تمام چیزیں ہوں گی؟ ہاں اگر کچھ اور ہمارے فورم فعال ہوتے، جیسا کہ حق ہے فعال ہونے کا، سیمینار مختلف موضوعات پہ ہوتے، ورکشاپ مختلف موضوعات پہ ہوتے، گروپ ڈسکشنز ایسے ہوتے، مساجد کے اندر چیزوں کو اس طرح سے بیان کیا جاتا، دروس انداز کے ایک جال بچھا ہوا ہوتا، مدرسے آپ کے بہت زیادہ فعال ہوتے، इस सिलसिले में, लेकिन ज्यादातर हम ये देखते हैं कि उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं पाई जाती है। अगर कुछ लोग काम कर भी रहे हैं तो वो गैर मयारी किस्म का काम बासौकत नजर आता है। और मजालिस को अगर हम उठा के देख लें तो लाजानी बहसें, सिदरतुल मुंतहा की लंबाई चौड़ाई और गहराई उनके अंदर नापी जा रही, और बहुत से तो अफराद जो कि दीनदारी के हवाले से भी मशहूर हैं, तो बाज़ोकात वो आम हाजरीन का मजमा उसके अंदर जनाब मुल्ला सदरा के जो है वो नजरियात वो पेश कर रहे हैं, और उनके असफार अरबा जो मशहूर उनका नजरिया है वो चीजें बयान की जा रही हैं, या मसलन मुल्ला हादी सब्जवारी उनकी जो शरह मंजूमा है किताब उसके मतालिब लोगों के सामने पेश किए जा रहे हैं, कि जो इंतहाई यानी आम लोगों के सामने ये चीजें बयान करने की नहीं। बाज़ औक़ात इस्तदलाल लाए जाते हैं तो मुतशाबे जो आयात हैं या अहादीस हैं उनसे इस्तदलाल लाया जाता है, और उन मौजूआत में से जो कि अखलाकी मौजूआत हैं जिससे अखलाक व किरदार के अंदर कोई तब्दीली आती है उनको मौजू बहस ही नहीं बनाया जाता। अब आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, बयान करें कि जो पिछले साल जितनी मजालिस आपने सुनी थी, फकत उन मजालिस को सुनकर आपके अंदर क्या तब्दीली पैदा हुई। पिछले साल जो आपने कितनी मजलिस सुनी होंगी ना, अपने अंदर कोई तब्दीली बताइए। यानी जब मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरामोश हो जाए तो उसका बराह रास्त असर आजादारी के मजामीन पर पड़ता, आजादारी के मजामीन पर। लोग मजलिस के अख्तिताम पर अपनी किसी जिम्मेदारी पैदा करने का कोई एहसास उनके अंदर पैदा नहीं होता, बल्कि मजलिस के अख्तिताम पर जिम्मेदारी खत्म होने का एहसास पैदा होता है। यानी वो तमाम अफराद जो मजलिस अज़ा आकर अटेंड कर रहे हैं, मजलिस के अख्तिताम पर अपनी किसी जिम्मेदारी और फरीजे के एहसास के कायल नहीं होते। और वो इमाम हुसैन की जो उम्मत की इस्लाह के लिए जिन्होंने अपने पूरे खानवादे को कटवा दिया और सबके सब लोग जो है वो शहीद करवा दिए, यानी उनके उस मकसद की तरफ ना पढ़ने वाले का दिमाग और जहन और मजामीन जाते हैं और ना सुनने वाले इस तरफ मुतवज्जे होते हैं। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर वो ताजा मजालिम है जो आजकल किए जा रहे हैं उनके मकसद को फरामोश कर। देखिए मजालिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं ये शिफा खाने की तरह से, ये हॉस्पिटल्स हैं, यहां गुनाहगार जो है अपनी बीमारियों की शिफा पाते हैं, और जाकिर जो है वहां पर किसी डॉक्टर की तरह से। अब आप खुद बताइए कि अगर डॉक्टर इलाज ना करे और सिर्फ फकत अशार सुनाकर मरीज को चला जाए तो क्या मरीज कभी कोई सेहत याब होगा? दवा के बजाय सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज उसको पिलाता रहे, कभी उसको सेहत मिलेगी? आप खुद बताइए कि ऐसे मजामीन की तारीफ होनी चाहिए या मजम्मत होनी चाहिए जिनमें मजालिस में देखिए फिक्र इमाम हुसैन, उनके हदफ पे बात होती, उनके मकसद पे बात होती, लेकिन ना उनके हदफ पे बात होती है ना उनके मकसद पे बात होती है, सिर्फ उनके जिस्म और जान के हवाले से उनके जख्मों की तस्वीर कशी होती है, उनके कद्दो कामत की, उनके बालों बाजुओं चश्मों अबरू की तौसीफ बयान होती है। शायरी में किसी जगह पर कहीं कहीं ये चीज मतलूब होती है, मगर हमेशा नहीं। देखिए जब मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनका वो फरामोश हो जाए तो, और सिर्फ मकसद लोगों का रसूमात की अदायगी रह जाए तो फिर कोई समझने समझाने पर तैयार नहीं होता, फिर किरदार साजी के ऊपर कोई बात नहीं होती, फकत रोने और रुलाने पर तवज्जो दी जाती, और उसके बाद मजालिस के अंदर जो कुछ भी बोला जाता है वो किसी सोचने और अमल करने के लिए नहीं होता, बल्कि सिर्फ हम के जज्बात को उभारने के लिए होता है। मजालिस से अजा पढ़ने वाले ये नहीं बताते कि इमाम हुसैन क्यों कत्ल हुए, बल्कि वो सिर्फ ये बयान करते हैं कि इमाम हुसैन कैसे कत्ल हुए। एक बहुत बड़ा मसला है, इसमें लोगों के अखलाक व किरदार के हवाले से या आइमा मासूमीन के अखलाक व किरदार के हवाले से बहुत कम बातें होती हैं, उनके अफाल उनके अकवाल को बहुत कम बयान किया जाता है, बल्कि फकत जिस्म के जख्मों को शुमार किया जाता है। उलमा बयान फरमाते हैं कि अगर ये वाला तरीक़ेकार अपनाया जाता है तो आजादारी में तरक्की बजाय उमूदी होने के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जाती है, आजादारी उफकी हो जाती हॉरिजॉन्टल, यानी तरक्की इस तरह से होनी चाहिए थी, उमूदी होनी चाहिए थी ना कि उफकी। तो और यहां पर कमाल जो है ना वो फकत और फकत अदायगी रसूम में समझा जाता, अलम का साइज कितना होना चाहिए, जितना आप बड़े से बड़ा अलम करते चले जाएं, इसमें कोई यानी उसकी मजम्मत खुदा ना खास्ता नहीं हो रही, लेकिन फकत जिसकी तरफ तवज्जो होकर रह गई है, फकत गोटा किनारी उस पर कैसा लगा हुआ है, इसमें कपड़ा और रंग किस तरह का है, सारी तवज्जोहात का मरकज वो चीज हो जाती जो सब अपनी जगह एक जहत के लिहाज से मतलूब भी हैं मगर मुकम्मल इस्लाम उनके अंदर नहीं। और आपने बहुत कुछ छोड़कर बहुत कम पर इक्तफा कर लिया। तो देखिए आजादार मजलिस अज़ा के बाद इससे पहले भी बात बयान हुई थी, समझते हैं कि बस आखिरी मरहला यही है, इसके बाद कुछ नहीं, तबरुक लेना है, घर चले जाना। वो जिसे इंतहो कमाल समझते हैं वो फकत वो रसूमात होती हैं जिसमें वो तरक्की करते जा रहे हैं, जिद्दत पैदा करते जा रहे हैं, तनव्वो पैदा करते जा रहे हैं, क्योंकि कमाल उसी को समझते हैं। और इस तरह से आजादारी उमूदी के बजाय उफुकी होती चली जा रही। देखिए आजादारी के अंदर जो मकसदियत है ना, ये दोनों के अंदर होनी चाहिए, उसकी जाहिरी शक्ल में भी मकसदियत होनी चाहिए और उसके मजामीन में भी मकसदियत होनी चाहिए। यानी जो आजादारी हम कर रहे हैं इसमें हुसैनी किरदार पैदा नहीं हो रहा। देखिए आपके सामने वाज़े तौर पर बात करनी पड़ेगी कि जो मजालिस के जो उनवान और मजामीन चल रहे हैं उससे हुसैनी किरदार पैदा नहीं हो रहा। बात बहुत बुरी लगेगी और लगनी भी चाहिए क्योंकि बड़े अजीब सी इस तरह से मिसाल दी जाए, लेकिन बात को समझाने के लिए कि देखिए नाम हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ले रहे हैं और किरदार जो है ना वो हमारा वो यजीदी लश्कर का सा। उनका लश्कर यजीद का जो लश्कर था वो हर तरह के गुनाह में गिरफ्तार था, हम भी कोई गुनाह नहीं छोड़ रहे, वो कदम कदम पे हुक्म खुदा की मुखालिफत कर रहा था, हमने भी खूब मुखालिफत हुक्म खुदा और रसूल पे कमर बांधी। और जब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अमरो नहीं की आवाज दरबारी अजीत में बुलंद की थी तो उनका गला घोटने के लिए, उनकी बात को कता करने के लिए अजाने दिलवाई गई थी। तो यहां जब भी कोई इसलाह की बात की जाती है इस हवाले से, उस पर फौरन मुकसिर होने का, दुश्मन अहले बैत होने का लेबल लगाकर उसका गला घोट दिया जाता है। गोया इखलाक और किरदार की बात करना आजादारी से मुतसादिम है। सुबहान अल्लाह, कितना अजीम नजरिया हो गया साहिबान ईमान का। वो आजादारी जो ऊंचे हदफ तक पहुंचने का एक वसीला और जरिया थी, उसकी मकसदियत को खत्म कर दिया गया। अफसोस इस बात का है कि जिस बात के लिए उन्होंने इस्लाम पर अपनी जान को कुर्बान किया है उसी इस्लाम को मुकाम अमल में हमने कुर्बान कर दिया। उन्होंने इस्लाम पर जान कुर्बान की थी, हमने इस्लाम को कुर्बान कर दिया। और 2 महीना और 8 दिन की जो मुसलसल यह आजादारी होती है ये कितनी मौसर थी। 8 रबीउल अव्वल की रात वो जो हमने 2 महीना 8 दिन इस तरह से एक बेमकसद किस्म की आजादारी की, उसका नतीजा 8 रबीउल अव्वल की रात को और 9 रबीउल अव्वल के दिन खूब खुलकर सामने आ जाता। क्या म्यूजिक चलता है, कैसी फिल्में चलती हैं, कैसी बेहिजाबियां होती हैं, गोया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रुख्सत कर दिया गया। और इस्लाम था ही सारे का सारा इमाम हुसैन में, तो गोया इस्लाम ही रुख्सत हो गया। तो ऐसा इस्लाम अगर कोई है तो उस पर हमारा सलाम हो। तो देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो आजादारी, इससे हमारी जिंदगियों में इंकलाब क्यों नहीं आता? हम इंकलाब का बहुत ज्यादा तस्करा सुनते हैं, इमाम हुसैन ने इंकलाब बर्पा कर दिया, इंकलाब बर्पा कर दिया। हमारी अपनी जिंदगियों में उससे इंकलाब क्यों नहीं आ रहा? क्यों हम मुहर्रम की मजालिस सुनकर मुनकलिब नहीं हो रहे? शब आशूर ज़िमनन हम सब लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नमाजों का हाल सुनते हैं। एक रात की मोहलत मांगी गई थी इबादत के लिए, और उसी नमाज को जिसके लिए मोहलत मांगी गई थी मोमिनीन जाया करते हैं। इमाम हुसैन के असहाबे बावफा की आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक का तस्करा करते हैं, लेकिन मोमिनीन के दिल आपस में सब जुदा जुदा। तो शायर ने किसी ने कहा है ना कि मातमी लाख सही नफ्से बेरिया किसमें है, देखना है तेरे उसवे की अदा किसमें। तो मजालिस में ऐसे मौजूआत उठाए जाते हैं जिसे आमियाना जबान में कहा जाए जिनका मकसद एक जहनी अय्याशी होता, ना मुकल्लफ हम हैं उन मौजूआत के, ना हमसे वो कब्र में पूछे जाएंगे, ना आखरत में पूछे जाएंगे, ना पुल सिरात में पूछे जाएंगे, ना मीजान में पूछे जाएंगे, ना बरजख में, ना कयामत में, किसी जगह उनसे मुताल्लिक कोई सवाल नहीं होगा, ना कुछ पूछा जाएगा। और ना भी अगर हमें वो बातें मालूम हो तो ना हमारी रूह पर कोई असर मुरतब होता है, ना कोई किसी किस्म की कोई महरूमी होती है कि जो हमें आखरत में जो है जाकर जिसका एहसास हो। तो देखिए कैसे मजामीन बयान होने चाहिए। देखिए आजादारी अगर बामकसद हो ना तो वो मजा तो वो इंसान को तब्दील कर देती। यानी कैसे मजामीन होने चाहिए आजादारी और मजालिस में हमारे, कि बदअकीदा आए तो सही अकीदा लेकर जाए, बेनमाजी आए तो नमाजी बनकर जाए, बद अखलाक अगर आए तो अच्छे अखलाक का कोई मुहर्रिक अपने साथ लेकर जाए, कंजूस अगर आए तो सखावत का एक पैगाम लेकर जाए, झगड़ालू अगर कोई वहां पर आ जाए तो बुर्दबारी का एक दर्स लेकर जाए, दुनियादार वहां पर आए तो दीनदार बनकर जाए। यानी इमाम हुसैन उनके अपने और उनके असहाब बावफा की सीरत पर अमल करने का एक अहद करके जाए मजालिस से, ऐसे मजामीन आपके होने चाहिए। मगर दिल हमारा उस वक्त खून के आंसू रोता है कि ऐसे मजामीन जिन बयान किए जाते हैं कि जिनकी हाजिरीन को कोई जरूरत नहीं होती और जो जरूरत होते हैं वो जाकिर का मौजू ही नहीं होती। यानी देखिए उनके फजाइल का कायल होने के बाद अमल करना बहुत जरूरी होता, और अगर हम कहें कि सिर्फ कसीदा फानी हो और अमल उसके साथ ना हो तो अभी मुबाहले की तारीख गुजरी है ना, सिर्फ कसीदा खानी हो और उसके साथ अमल ना हो तो नजरान के ईसाइयों की सीरत पे अमल होता। वो भी तो कसीदा खानी कर रहे थे ना, हम आज ऐसे चेहरे देख रहे हैं जो पहाड़ को भी अपनी जगह से हटने का हुक्म दे तो हट जाए, कसीदा खानी तो थी लेकिन क्या थे, उनकी बात नहीं मान रहे थे, रिसालत पर ईमान नहीं लाए, जजिया देना कबूल किया लेकिन माने नहीं उनकी बात को। मैं तो कह रहा हूं फिर भी वो बेहतर थे, जजिया कुछ ना कुछ पैसे देके गए, यहां तो खमोश भी जेब से निकाला नहीं जाता, गोया उनसे भी बदतर एक सूरत हाल हो जाती। तो अब उनके फजाइल को सुनकर हम खूब नारे लगाते हैं जबकि खुद उनकी किसी भी सिफत को अपने अंदर पैदा करने की कोई उमंग हमारे अंदर पैदा नहीं होती। यजीद और दुश्मना ने अहले बैत पर हम खूब उनके किरदार के ऊपर तवर्रा करते हैं और मगर वही अखलाक और किरदार खुद अपनाए हुए उन्हीं जैसा। वो झूठे थे, दगाबाज थे, मुनाफिक थे, सिर्फ जुबानों से इकरार करते थे, अमल से इनकार करते थे उनकी बात का, उनकी कोई बात नहीं मानते थे, मासूमीन के फरामीन की मुकम्मल तौर पर मुखालिफत करते थे। और आप भी उठाकर देख लीजिए मिजान हिकमत अदियत शिया आइमा की अहादीस निकाली और आईने की तरह से अपने सामने रखी, ऐसा लगता है कि हम एक एक हदीस को पढ़ा है हमने बगौर उसके बाद मुखालफत करने की दिल से ठानी। यानी हर चीज में हमें इमाम के हुक्म की मुखालफत नजर आती, हर फरमान की मुखालफत नजर आती। वो इमाम जब मोमिन की अलामत निशानियां बयान करते तो एक अलामत भी अपने अंदर नजर नहीं आती, जब वो शिया की अलामतें बयान करते हैं तो शियों की कोई अलामत हमें अपने अंदर नजर नहीं आती, वो जब मुत्तकीन की अलामत बयान करते हैं तो कोई भी शख्स उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता दिखाई नहीं देता। तो देखिए ये बात याद रख लीजिए कि फकत नारे लगाना ये इमाम की इज्जत में कोई इजाफा नहीं करता, उनका जो मुकाम इंतहाई बुलंद है वो अपनी जगह पर है ना, उनके जो हम आंसू बहाते हैं वो उनके दर्जात को बुलंद करते हैं। इमाम को अगर कोई चीज चाहिए तो वो आपका अमल चाहिए। इमाम ये देखना चाहते हैं कि कोई अमली जिंदगी में हमारी सीरत की कितनी पैरवी करता, वो सही मानों में मोमिन है या मुनाफिक। आप खुद बताइए पैगंबर इस्लाम की जिंदगी मुनाफिक किसको कहा जाता था, जो जुबान से तो रसूल खुदा की मोहब्बत का दम भरते थे मुनाफिक लेकिन पैगंबर की मुकाम अमल में हमेशा मुखालिफत करते थे, इसी को तो मुनाफिक कहा जाता है ना। यही वजह है कि उलमा ने इस्लाम को एक खेत से मिसाल दी। खेत देखिए, खेत को अपनी बका के लिए दो चीजों की जरूरत होती, एक तो काफी मकदार में उसको पानी चाहिए होता, पानी चाहिए, खाद चाहिए, वरना तमाम खेती खुश्क होकर रह जाएगी। और दूसरी चीज है कि खेत को आफात से बचाना, झाड़ियां हटाई जाती हैं, हल चलाए जाते हैं, कीड़ों से बचाने के लिए कीड़ा मार स्प्रे किया जाता है, टिड्डियों वगैरह से खेतों को बचाया जाता है। तो इसी तरीके से उलमा ने फरमाया दीन की अजीम खेती के लिए भी पानी और खाद की जरूरत होती है, और अमर बिल मारूफ जो है वो उसके लिए पानी और खाद का काम करता है, और नहीं अनिल मुनकर जो है वो कीड़ा मार स्प्रे है, वो उन कीड़ों को ختم کرتا ہے کہ جو کہ کھیت کو نقصان پہنچانے والے. یہ دو کام اگر نہ ہوں, نہ ایسا پانی دیا جائے اور نہ کیڑوں سے اس کو بچایا جائے, تو وہ کھیتی ویران ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے, پھر وہاں سے کوئی چیز نہیں اٹھتی. یہی وجہ ہے کہ اس امر و نہی کو تمام واجبات کے اوپر بہت ہی زیادہ فوقیت حاصل, اس کے بغیر تمام احکامات جو ہے احکامات اسلامی معطل ہو کے رہ جاتے ہیں. دماغ میں خیال آتا ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اور اپنے گھر والوں کو کیوں قربان کیا تھا, تاکہ احکامات الہی کے اوپر عمل ہو سکے. ہم مجالس میں ایک حکم اسلامی یا ایک حکم فقہی اگر کبھی بیان ہو جاتا ہے تو فوراً اس کی مذمت شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ تو چاہتے تھے احکامات الہی کے اوپر عمل ہو, لیکن ہماری مجالس میں ایک حکم اور ایک حکم الہی اور ایک مسئلہ فقہ بھی بیان کرنے نہیں دیا جاتا. امام فرما کے گئے ہیں کہ میرا مقصد امر و نہی ہے. ہم کسی بھی گناہ کی مذمت عام طور پر نہیں سنتے. بے پردگی کی مذمت مثلاً اس کے اندر بیان کی جائے, داڑھی مڑنے کی مذمت بیان کی جائے, گانے و موسیقی کی مذمت بیان کی جائے, مکس گیدرنگ کی مذمت نہیں بیان کرنے دیتے. ذاکر کو منع کر دیتے, دیکھیے اس قسم کے موضوعات نہیں اٹھائیے گا. کیا مجالس اعضاء کے یہ موضوعات نہیں ہو سکتے؟ کیا مجالس اعضاء اور احکامات الہی کے بیان میں کوئی تضاد ہے؟ یعنی کیا یہ ٹکرانے والی چیزیں ہیں آپس میں؟ دیکھیے پورا کربلا جو ہے جا بجا نمازوں کے ذکر سے بھرا پڑا. کتنا وہ ملتا ہے کہ حجاج ابن مسروق مؤذن کو امام ساتھ لے کر گئے تھے صرف اذان دینے کے لیے, ایک مؤذن ساتھ میں تھے, اور اس کے بعد ان کو ہٹا کر روزے عاشور حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان سے اذان دلوائی گئی اور ایک رات کی مہلت مانگی گئی, اور حضرت زینب کی نماز شب کے پورے جو ہے واقعات آپ اس کے اندر سنتی ہیں, تسبیح و تحلیل اور نمازوں کے ہم ہمے سے کیسا جو لشکر حسینی جو ہے گونج رہا تھا, یہ تمام چیزیں آپ سنتی ہیں. مگر ہم ذاکر کو اس کے باوجود بھی منع کر دیں, خبردار مجالس کے اندر یہ نماز کا ذکر لے کے نہ بیٹھ جائیے گا. وہ عقیلہ بنی ہاشم, وہ عالمہ غیر معلمہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, جو مسئلہ فقہ پوچھ کر چوتھے امام کی امامت کی ابتدا کر رہی, اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہیں, اور پردے کے حوالے سے بھی سوال کر رہی ہیں کہ کیا ہم یہاں خیموں میں جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر آ جائیں. میں نے ان کا تعارف اسی طرح سے جبھی کروایا, عالمہ غیر معلمہ عقیلہ بنی ہاشم کا اتنا چھوٹا سا مسئلہ فقہ ان کو نہیں پتا ہوگا, لیکن ہمارے بعد میں آنے والے لوگوں کی اصلاح کے لیے بات پہلے سے بیان کر کے گئیں اور متوجہ کر کے گئیں. مگر ہم یہاں ذاکرات کو منع کر دیتے ہیں, خبردار پردہ وغیرہ پڑھنے کی, پردے کے موضوع کے اوپر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. باقاعدہ ایک مسجد کے پیش امام خود بیان فرما رہے تھے کہ وہاں کے ٹرسٹیز نے ان کو منع کیا ہے کہ دیکھیے ایک تو رزق حلال کے اوپر کوئی گفتگو اس کی اہمیت پہ نہ کیجیے گا, اور امام زمانہ کے موضوع پہ گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں پر یہیں کراچی کی بات بیان کی جا رہی. تو بہرحال جب دیکھیے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جب افراد کو ظاہر ہے کہ سدرت المنتہا کی لمبائی چوڑائی اور گہرائی بتائی جائے گی تو ان کی اخلاقیات پہ تو کوئی اثر اس کا مرتب نہیں ہوگا نا. ایسی مجالس اعضاء پھر کیا ان کے اوپر اپنے اثرات کو چھوڑیں گے؟ اور دوسری ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ جو ذاکرین ہیں یا خواتین ہیں اس سلسلے میں جن ذاکرہ کا آپ اہتمام کرتی ہیں, ان کا علمی معیار کیا, کیا اس کا کوئی کرائیٹیریا ہے؟ کیونکہ اصل میں وہی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا معاملہ ہے کہ مجالس اعضاء کیونکہ گھر گھر اتنی زیادہ ہوتی ہیں تو اس میں بہت سارے جاہل اور وہ افراد کے جو کہ کیپیبل نہیں ہوتے اس کے کہ وہ مجلس وغیرہ پڑھیں, تو ان کو بھی ایک موقع مل جاتا ہے ممبر پہ آنے کا اور مجالس پڑھنے کا. جنہ کیپ لگانی ہوتی ہے, شیروانی وغیرہ پہننی ہوتی اور آ جانا ہوتا ہے. اور خواتین کی تو اسی طرح سے ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو رٹا مار کے مجلسیں جو ہے وہ آ کر پڑھ دیتی, اور زیادہ تر کو دیکھا جائے تو نہ کوئی ٹریننگ لی ہوتی ہے نہ کسی جگہ سے کچھ پڑھا ہوتا ہے, الٹے سیدھے اس طرح سے بہت سارے موضوعات سن سن کر مجالس جو ہے وہ تیار کی جاتی, محنت نہیں کی جاتی, کوئی علم اور تجربہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا. جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے سنایا تھا نا کہ وہ लतीफा भी है कि वो किसी शख्स के दिमाग का ऑपरेशन होने वाला था, वो बहुत घबरा रहा था, तो वार्ड बॉय उसके पास आएगा, घबराने कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब ने इस ऑपरेशन की बहुत सारी फिल्में देख रखी हैं पहले से, तो वही उनको कोई ना एक्सपीरियंस है, ना कोई तजर्बा है, ना किसी जगह से कुछ पढ़ा है, अब क्या है, तो वो आ गए हैं ऑपरेशन करने के लिए, तो इतने बड़े मनसब के ऊपर आ गए हैं और इल्मी काबिलियत उन्होंने कोई इस सिलसिले में हासिल नहीं की। तो एक बात और दिमाग में रहे कि आपने कभी शायद गौर किया हो इस बात पर कि ये जालिम जितने भी हैं ये क्यों हमेशा औलिया खुदा के खिलाफ रहे, ये हमेशा से अंबिया के खिलाफ रहे, ये हमेशा से आइम्मा के खिलाफ रहे, ये उलमाए हक्का के खिलाफ रहे, तमाम औलिया के दुश्मन क्यों रहे हैं लोग? अगर ये फकत नमाज और रोजा करते रहते ये अंबिया औलिया और आइम्मा, तो बताइए इन बादशाहों को और इन जालिमों को इनसे क्या खतरा था? कोई खतरा नहीं था। फिर क्या वजह है कि रिवायात में मिलता है कि बनी इसराइल के 70-70 अंबिया को एक एक दिन के अंदर कत्ल किया जाता था? क्यों? ये इस वजह से होता था, ये जालिम इनकी दुश्मनी इस वजह से रखते थे, खिलाफ यूं होते थे कि तमाम अफराद गुनाहों और जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाते थे, ये उठ खड़े होते थे। अच्छा, अब यहां उठ खड़े होने की जब बात बयान की जाए तो हमारा नौजवान फौरन ये समझता है कि उठ खड़े होने से मुरादी है बाहर निकलो, गाड़ियों को जो पत्थर मारना शुरू कर दो, टायर जलाओ, ये मायने उठ खड़े होने से मुराद। नहीं, ऐसा नहीं, ये भी कभी मरहला आता है, कभी कहीं आगे जाकर अगर उलमा उसकी इजाजत दें तो एक अलग बात, लेकिन इब्तदान इल्म और इखलाक की मजबूती बड़ी जरूरी है किसी भी इंतहाई यानी तरक्की करते हुए किसी आगे की मंजिल की तरफ जाने के लिए। बुनियादी चीजों से किसी को कोई वाकफियत नहीं। आप उन्हीं तमाम नौजवानों जो तमाम चीजों को करने को तैयार रहते हैं, उनका वजू चेक करें, ना किसी को वजू सही है, ना उनकी नमाज सही है, फजर की नमाजें जो है वो कजा करते हैं, खुमस वो नहीं देते, अब ये उठ खड़े हो भी गए तो सिवाय इसके नुकसान पहुंचाने के बाज़ोकत कोई और काम नहीं करते नजर आते, अपनी ही औलाद को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने साहिबान ईमान की ही दुकानों में तोड़फोड़ करते हैं, मुख्तलिफ चीजें इस तरह से अंजाम दी जाती हैं। तो बहरहाल देखिए, ये जो आजादारी थी, इसकी जो इतनी जबरदस्त एक पावर थी, इसको अगर हम सही तरह से अंजाम देते तो तबलीग दीन का कितना अजीम फायदा हम उठा सकते थे, कितना अजीम फायदा। हमें खुद सोचना चाहिए कि हमने आजादारी की इस कुव्वत से कितना इस्तेफादा किया, शायद 1% भी इस्तेफादा नहीं किया। 2 माह 8 दिन तक मुसलसल क्लासेस, आपकी किसी भी जगह अगर खुद सोचेंगे 2 महीने 8 दिन तक मुसलसल, बाद खवातीन तो 8-8, 10-10 मजलिसें रोजाना अटेंड करती, तो पूरे साल के लिए कितनी किरदार साजी हो सकती थी इन मजालिस के जरिए। इसमें कितना वक्त लगता है इन मजालिस से अजा को बरपा करने में, कितना पैसा माशाल्लाह साहिबान ईमान खर्च करते हैं, कितनी मेहनतें होती हैं, कितनी जहमतें हैं, कितने इंतजामात हैं, कितनी तैयारियां हैं माशाल्लाह, खुदा उन सब लोगों को सलामत रखे जो सब काम करते हैं। मगर जो बात कहने की है, मिसाल अच्छी नहीं, माफी चाहता हूं, लेकिन मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, जैसे ओलंपिक्स है, कितने बड़े इंतजामात ओलंपिक्स के किए जाते हैं, कितना पैसा खर्च होता है, करोड़ डॉलर, कितनी मेहनतें, कितनी जहमतें, और इतनी ऑडियंस को वहां पर जमा किया जाए, इतना वक्त पैसा और हर चीज जो है उस पर लगाई जाए, और वहां मसलन, मिसाल अच्छी नहीं है, बुरा लगेगा लेकिन ये कि समझाने के लिए, और वहां पे फकत हम गिल्ली डंडे का एक मैच करवा दें उस ओलंपिक्स की तमाम ऑडियंस के सामने, और ये कबड्डी का मैच करा के ओलंपिक्स को खत्म कर दे, हर शख्स आकर मजम्मत करेगा कि इतने ज्यादा इंतजाम, इतनी मेहनतें, इतनी जहमतें, इतना पैसा, इतना वक्त खर्च हो गया सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए, इससे क्या आपने इस्तेफादा किया? तो देखिए, ये कितनी बड़ी ऑडियंस इसके अंदर आती, लोगों के लाखों करोड़ों घंटे इसके अंदर, हर शख्स के जो है वो हर शख्स का एक एक दो दो घंटे, कब से घर से लोग निकलते हैं, कितनी मेहनतें करते हैं, बसों में लद के कहां कहां पहुंचते हैं, लाइनों में खड़े रहते हैं, ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं, और उसके बाद वहां आकर उनको सिर्फ सिदरतुल मुंतहा की लंबाई चौड़ाई और गहराई जो है बताकर उनका वक्त जाया कर दिया जाए, जो उनका मसले नहीं है, जो उनको बयान करने की चीजें वो सब बयान ना की जाए। तो अब आप खुद देखें कि लोगों के अंदर कितना तहरुक होता है, कितनी एनर्जी है लोगों के अंदर, हम इमाम हुसैन के सिलसिले में वो सारी मेहनतें बर्बाद हो रही, और उससे कितना इस्तेफादा कर रहे हैं हम, समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बस समंदर के किनारे खड़े, समंदर से इस्तेफादे की वजह से शबनम या ओस को चाट रहे हैं। तो आजादारी देखिए, इतना इसके अंदर तहरुक है, इतना तहरुक है, लोग किस किस तरह से, जैसे करबला जब इमाम हुसैन की ज्यारत के लिए लोग जा रहे होते हैं तो आपने देखा कि माजूर है वो भी जा रहा है, कि एक एनर्जी उसके अंदर होती है, एक गम का खुद एक ऐसा तहरुक है उसके अंदर, तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि अगर हम वाकई से आजादारी को और मजाले से अजा के सिलसिले को इसको जरा फ्रूटफुल बनाते और उसके और अकायदे हक्का की इसमें कोई आबियारी होती और अखलाक और किरदार के हवाले से जो है कोई उलू बुलंदगी होती, अहकामात खुदा की मारिफत इसके अंदर बयान की जाती, अपने अमल को बेहतर से बेहतर बनाने के तरीके हम इसके अंदर बताते, तो कितनी बात आगे तक जा सकती थी। मगर अफसोस कितने कम है वो जाकिर और कितनी कम है वो खवातीन जाकिरात के जो इन मौजू के ऊपर बात करती। हाल बता इस तनकीद के अंदर कोई गलती ना हो जाए कि बाज औकात तनकीद करते करते वो अफराद भी लपेट में आ जाते हैं कि जो वाकयतन इन बातों का ख्याल रख रहे हैं, जो वाकयतन काम कर रहे हैं, वो उलमाए हक्का जो वाकई हक अदा कर रहे हैं, वो जाकिरीन जो वाकई हक अदा कर रहे हैं, वो भी इन लोगों की लपेट में आ जाते हैं। उनका एक अलग काम है, उनकी अलग खिदमात है, उनसे कतः नजर, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, बहुत कम तादाद है ऐसे जाकिरीन की और उलमा की। तो कोई भी आपको इससे मना नहीं कर रहा है, ना मरासिम के अजा में कोई कमी कीजिए, खूब रोइए, खूब रुलाइए, नारे भी लगाइए, लेकिन फकत जाहिर में चीज ना हो, दिलो जुबान के साथ आजा और जवारे भी इतात इमाम करते नजर आए, माहौल में इस्लाम का एक निफाज नजर आना चाहिए। देखिए हम क्यों जरिया बनाते हैं? क्यों हम अफसोस करते हैं कि मौला हम आपको दफन नहीं कर सके? अब अगर हम हुसैनी किरदार अपने अंदर पैदा कर लेंगे इन मजालिस को सुनकर, तो अगर कोई बेगोरो कफन नजर आएगा हम तड़प जाएंगे, फौरन तजीज़ो तकफीन पे आमादा हो जाएंगे। हम जो है अलम बनाते हैं, ऊंचे ऊंचे अलम बनाते हैं, मगर उसके साथ साथ एक नियत और भी हो कि हम अपने मौला अब्बास की वो इताअत हमको याद होनी चाहिए और इमाम पर अपनी वो फिदाकारी, उनके चश्मे अबरू का जो ख्याल जिस तरह से रखते थे कि इमाम के एक एक बात का, उस तरह से ये किरदार हमें उस अलम को देखकर इस किरदार को अपने अंदर पैदा करना चाहिए। और हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की जब कोई याद मनाएं, उनका जिक्र करें, तो अजान अली अकबर को दिमाग में रखते हुए नमाज का जो पैगाम है वो दिमाग में रहना चाहिए, फिर कोई अपनी नमाज कजा ना करे। बीबियों के पर्दे के हवाले से जब भी जिक्र हो तो अब औरतें जो वहां पर आकर बैठी हैं उनमें कोई बेपर्दा ना रह जाए, सब बापर्दा और मुहज्जिबा हो जाए, ऐसे मौजूआत उसके होने चाहिए। हबीब इब्ने मजाहिर और शबीब शाकरी और मुस्लिम इब्ने औसजा जैसे बुजुर्ग और बूढ़े हजरत, जब उनका जिक्र हो तो उससे खुद ब खुद जो बूढ़े हैं उनके अंदर दीन के लिहाज से एक जिम्मेदारी का एहसास पैदा होना चाहिए। बूढ़ा ऐसे जैसे किसी कौम में बुजुर्ग हो, किसी कौम में नबी होता है। तो अब नबी का काम यही दावत और तबलीग है, समझाना है लोगों को, तो इस सिलसिले में बूढ़ों को एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हजरत कासिम का हजरत अली अकबर की जवानी का जब तस्करा हो तो उसके अंदर खुद ब खुद इताते इमाम का भी एक सबक होना चाहिए, नौजवानों को जो मिलना चाहिए। इन बातों का ख्याल रख के मजाली से अजा बर्पा की जाएंगी तो फिर सही मानों में हम कहेंगे कि हाँ इन बातों का अब हम ख्याल रख रहे हैं, तो फिर ये इस्तकबाल मुहर्रम हमारा सही तौर पर इस्तकबाल इसका हो सकेगा और उसका हक अदा हो सकेगा। इन मजालिस के जरिए देखिए लोगों के कॉन्सेप्ट को बदलें। आम तौर पर औरतों का कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, आम औरतों का कि बहुत कमजोर होती हैं, बहुत बुजदिल होती हैं, बहुत मुतजलजल होती हैं, फरारी होती हैं, डगमगाने वाली होती हैं, सरेंडर कर जाने वाली सिंफ उनको जो है वो समझा जाता है। आप करबला की खवातीन की मिसालें लाकर उन औरतों के अंदर एक इस्तकामत पैदा करने वाली तकारीर जो है वो करें, उनके अंदर एक तवानाई कल्ब पैदा करनी चाहिए औरतों को, एक एहसास कमतरी जो उनके अंदर इस अंदाज से पैदा हो गया उसको हटाना चाहिए, और जुर्रत दीनी के इजहार का जज्बा रखने वाली खवातीन में उनको आपको तब्दील करना चाहिए। तो क्या आपने नहीं देखा इस तरह की मिसालें देनी चाहिए कि करबला की खवातीन किस तरह की थी, कितनी मसाले दीनिया के ऊपर अमल करती थी कि जब इतने बच्चे इतने अरसे के भूखे और प्यासे थे और जब जकात की कोई चीज उनके मुंह में चली गई तो करबला की उन खवातीन ने मुंह में उंगली डलवाकर और वो लुकमे मुंह से निकलवा दिए थे। ये वाला किरदार कि कोई नामशरू किस्म का जो माल है वो उनके पेटों में ना चला जाए। आप भी ऐसे वाकयात बयान करके लोगों पर उसका इंतबाक करें, इमामों की सीरत बताएं और उनका लोगों पर इंतबाक करें, देखें इमाम ये कह रहे हैं आपका अमल ये है, इमाम ये करते थे और हमारा अमल ये, हम सरीहन उनके खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वरना फकत जेब दास्तां के लिए कुछ दो चार रोने लोनाने के जुमले इस्तेमाल करके ना उनकी जिंदगियों पर वो कोई असरात मुरतब करते हैं, ना उनके अंदर कोई तब्दीली लेकर आते हैं, ना उनके अखलाको किरदार की कोई तब्दीली इसके अंदर होती है। फकत मर्दों की मजालिस में अलखसूस सिर्फ मनाजराना गुफ्तगू, इससे माशरे में नफरतों का इजाफा ही होता है, फकत उस तरह की चीजें आमतौर पर होती हैं। हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, خاص طور پر لڑکیوں کے سلسلے میں کہ ان لڑکیوں کو محبت امیر المومنین علیہ السلام میں پختہ کر اور انہیں اپنی مفروضہ نادانی پر باقی رہنے دو. محبت پختہ کرو کے معنی ان کی ذات سے، ان کی تعلیمات سے آشنا کرو. اگر ایسی خواتین شروع سے مجالس کے اندر اس بات کا احساس دلائی، بچپن سے ہی حجاب اور عفت کی تعلیم اگر دی جائے گی اور ان کو اخلاق باختہ قسم کے ٹی وی پروگرام دیکھنے سے روکا جائے گا، فوج قسم کے مناظر ٹی وی کو پر دیکھنا سے ان کو محفوظ رکھا جائے گا، نامناسب لباس انہیں برے مناظر اور برے پروگراموں سے محفوظ رکھا گیا، ان کے لباسوں کو نامناسب، تعلیمات کے اندر یہ بیان کی جائیں چیزیں، بے پردگی کی مذمت بیان کی جائے کہ اس طرح سے رشتہ داروں کے گھر بھی نامناسب یا بے پردہ لباسوں میں نہ ان کو لے کر جائیں، تو چھوٹی عمروں سے ہی ان کے اندر یہ برائیاں جو ہیں ختم ہونے لگیں گی. ورنہ کیا ہوگا، چھوٹی عمروں سے کیا ہونے لگتا ہے، ورنہ برائیوں کے منبع جو ہیں موبائل فون، انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ، اور یہ اگر بغیر کسی بڑوں کی اور ولی کی سپرویژن کے اگر یہ ہوں تو کیا ہے، بچوں کی اور خاص طور پر بچیوں کی، ان کی نسوانیت اور ان کی معصومیت کو بچپن ہی میں ختم کر دیتی ہیں چیزیں. اور ہم سب بیٹھے سن رہے ہیں اور بس اٹھ کے جا رہے ہیں، نہ اس پر کسی کو کوئی خیال ہے کہ ان مجالس کے اندر کیا چیز بیان ہونی چاہیے، کیا چیز نہیں بیان ہونی. اب ایسی بے تربیت لڑکیاں بتائیے آپ کہ کب کنیزان فاطمہ اور کب کنیزان جو ہے زینب بن سکیں. نہ گھر میں کوئی ایسی تربیت دی جا رہی، گھروں میں تربیت کہیں نہیں دی جا رہی. اچھا جہاں تربیت دی جاتی ہے مدارس، وہاں پر لوگ بھیجتے نہیں. اور بہت زبردست انسٹیٹیوشن تھا تربیت دینے کے لیے آزاداری اور یہ مجالس، تو وہ مدرسے جو گھر گھر کھل سکتے تھے آزاداری کی اور مجالس کی صورت میں، ان کے نصاب کو ہی پورا تبدیل کر دیا گیا اور اس میں سے اخلاقیات، فقہ اور سماجی موضوعات کو بالکل یکسر نکال دیا گیا نصاب سے. مجالس اعضاء کا جو نصاب ہے، جو موضوعات ہیں، ان میں سے یہ چیزیں نکل گئیں، اخلاقیات نکل گئی ہے، فقہ نکل گئی ہے، سماجی موضوعات ہیں وہ نکل گئیں. اور ہم کیونکہ معاشرے کو فیس کرتے ہیں اور باقاعدہ فیس بک کے اوپر مدرسے کا اکاؤنٹ بھی ہے، اس میں کس کس طرح سے لوگوں کے سوال، اتنے بیسک بیسک سوال جو 8-8-9-9 سال کے بچوں کو پتا ہوتے ہیں، 80-80-90-90 سال کے بزرگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مدرسے کی اس کے اوپر بھیج کر سوالات کے، حیران ہوتے ہیں کہ یہ 80 سال کا بزرگ ہے، اس کو بھی یہ بات نہیں پتا. یہ ہے تو ان مجالس عزا میں جہالت کا احساس لوگوں کو دلانا چاہیے، یہ بجائے جہالت کا احساس دلانے کے ہم اکثر ذاکرین کو دیکھتے ہیں، جسے جہل مرکب کہتے ہیں نا، وہ ان کے اندر پیدا کر دیتی. مثلا کیا، ان کو بجائے کہ جہالت کا احساس دلائیں، ان کو تقویت پہنچاتے ہیں. ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے افراد کا مجمع ہے، مجھے آپ کی ذہانتوں پر بہت اعتماد ہے، ماشاءاللہ صاحبان عقل و شعور و فہم کا مجمع ہے. اب ہر شخص خوش ہو رہا ہے اپنی، یعنی جہل مرکب کس کو کہتے ہیں، جاہل اسکوائر، ڈبل جاہل جس کو کہا جاتا ہے، یعنی جو خود جاہل ہو لیکن اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور عالم سمجھ رہا ہو، یہ والا احساس ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ موضوعات نہیں ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، خاندان تباہ ہو رہے ہیں، کوئی تربیت دینے والا نہیں ہے، کانوں میں کسی طرح کی اس طرح کی باتوں کی کوئی باتیں کان میں نہیں پڑتی ہیں، تعلیمات سے کوئی واقف نہیں ہے اس سلسلے میں. تو اب آپ خود بتائیے کہ جتنے مضامین کا انتخاب بھی کیا جاتا ہے، وہ سب وہ ہیں جو غیروں کی مذمت میں، یعنی تمام مضامین غیروں کی مذمت پر خرچ کر دیے گئے. لا یعنی بحثیں ہیں، فلسفیانہ بحثیں ہیں، جن چیزوں کی لوگوں کو عمومی زندگی میں کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ابھی ہے نہ کبھی آئندہ کبھی ہوگی، وہ تمام چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. اور وہ فضائل بیان ہوتے ہیں عام طور پر جو آئمہ معصومین علیہ السلام کے ملکوتی اور آسمانی فضائل ہیں، جن کی پیروی ہم نہیں کر سکتے، وہ باتیں بیان ہوتی ہیں، ان کے بشری پہلو، ان کے بشری فضائل، وہ پیغامات ہوتے اور وہ فضائل و صفات وہ لوگوں کے سامنے ذکر کرتے، تو پھر یہ ہوتا کہ ہاں لوگوں کو ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ پیروی کرنا. تو لیکن آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ان مجالس اعضاء کے ذریعے لوگوں، کتنے لوگ سینکڑوں مجلسیں سن رہے ہیں، ہزاروں مجلس سن رہے ہیں، جو 60-60-70-70 سال کے ہو گئے ہیں، بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں مجلسیں سن چکے ہیں وہ، یعنی ہزاروں کلاسز لے چکے ہیں، لیکن معیار علمی جو ہے ان کا بڑھ کر نہیں دے رہا. اچھا ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے جو آپ فلسفیانہ مباحث بیان کر رہے ہیں اور انتہائی دقیق ترین موضوعات लोगों जाहिल लोगों के सामने छेड़ देते हैं, वो तमाम अफराद मजमे के अंदर बैठे हुए हैं जिनको दो दो अकवाले मासूमीन भी याद नहीं, जिनसे अगर आप वजू करवाएं तो 95% का वजू गलत निकले। वजू खाने इस बात के गवाह, जाइए मसाजिद के वजू खाने के अंदर कोई चेक करना चाहे तो लोग किस तरह से वजू कर रहे हैं। खवातीन पर्दा कितना बेसिक मसला है, पर्दे के मसाइल से नावाकिफ। तो मालूम अगर आप लोगों से अगर करवाएं कि कितनों के घर में सहीफ कामला है, कितने लोगों के घर में तौजील मसाइल मौजूद हैं, 2-3% से ज्यादा शायद ही किसी घर में ये हो, अगर होंगे भी तो लोगों को पता नहीं होंगे किधर रखी हुई। तो फजाइल ऐसे होने चाहिए जिनका मकसद इताअत की तरफ खींच कर लाना हो। जब कुरान खुद पैगंबर इस्लाम के जात को उसवा हसना करार दे रहा है तो ये कैसे मुमकिन है? दुरूद भेजिए मोहम्मद तो ये कैसे मुमकिन है कि दीगर मासूमीन के फजाइल में पैरवी का हुक्म ना हो, उनकी सीरत में पैरवी का हुक्म ना हो? देखिए गमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में एक हरारत, एक तवानाई है हर बातिल और हर गुनाह से टकराकर उसको खत्म करने की सलाहियत इस जज्बे के अंदर पाई जाती है, उस जज्बे को फकत सही इस्तेमाल करना। देखिए मजालिस और आजादारी के हवाले से उलमा बाज़ोकात कुछ आफात का तस्करा करते हैं जिन्होंने मजालिस की और आजादारी की इफादियत को कम कर रखा है। उनमें पहली चीज जो बयान की जाती है कि वो है कि मासूमीन की शख्सियत के फकत किसी खास पहलू की निशानदही और दीगर तमाम पहलुओं से सरफ नजर करना और पहलू तही करना, बस सिर्फ कोई एक खास, यानी सीरत का फकत एक ही पहलू पेश करते चले जाना और बाकी हजारों पहलुओं से सरफ नजर कर लेना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फकत यौम तासुआ और रोजे आशूरा जो उनका किरदार था फकत वो लोगों के सामने पेश किया जाता है, जबकि इमाम की जो पिछली 55-56 साल की जिंदगी और उनका किरदार था उस पर यकसर खामोशी अख्तियार की जाती। देखिए जो आइमा मासूमीन है ना उनकी शख्सियत के कहा जाता है दो पहलू और दो रुख हुआ करते हैं हमेशा। एक पहलू होता है जिसको हम कहते हैं कि ये नूरी पहलू है, मलकूती पहलू है या आसमानी पहलू है, जिसमें वो विलायत तकवीनी के हामिल होते हैं, यानी कुछ ऐसी बातें हैं वो फजाइल हैं वो मामलात हैं जो उनके और खुदा के दरमियान पाए जाते हैं। ये एक पहलू है, इसको भी बयान होना चाहिए, लेकिन इसमें हमारे अमल के लिहाज से कोई बात नहीं होती, ये भी बयान होना चाहिए, जाहिर फजाइल के अंदर ये है एक पहलू। और दूसरा उनका जो रुख और पहलू है शख्सियत का वो जमीनी है या बशरी पहलू जिसको कहा जाता है, कुल इन्ना माना बशरुम मिसलुकुम, जो पैगंबर इस्लाम के लिए भी है। तो उनकी जिंदगी का एक बशरी पहलू भी तो है, वो है उनकी सीरत कैसी थी, उनका लोगों के साथ बर्ताव कैसा था, उनकी खुदा से उल्फत वाबस्तगी कैसी थी, उनकी इबादत कैसी थी, वो इताअत खुदा के अंदर कैसे थे, वो अपने इखलास के अंदर कैसे थे, वो शुजा कैसे थे, वो लोगों की मदद कैसे किया करते थे, वो बुर्दबारी और तहमुल का मुजाहरा कैसे करते थे, वो अपने गुस्से पर काबू कैसे करते थे। ये तमाम चीजें हैं जो सीरत के अमली नमूने हैं, इनको यानी जो जब ये बयान होंगे तो लोगों के अंदर वो फजाइल लोग जब लोग अपने अंदर कोशिश करेंगे उनकी सीरत पर अमल करने की तो लोगों में वो तब्दीली लेकर आएंगे। लेकिन हमारे साथ क्या है, हमारे यहां इफरात तफरीत मयाना रवि नहीं, हम मलकूती और आसमानी पहलू जो है उनकी शख्सियत के फकत वो अपनी तकरीरों में बयान करते चले जा रहे हैं, जमीनी और बशरी जो जो उनकी शख्सियत है पहलू है उनकी सीरत का उसको जिक्र भी नहीं कर रहे। दोनों को बराबर से पेश करना चाहिए बल्कि दूसरे पहलू को ज्यादा शिद्दत के साथ ताकि लोगों के अंदर इखलाके मासूमीन की झलक पैदा हो, वो आपको अपनी तकरीरों के अंदर बयान करना चाहिए। देखिए आइम्मा का मुतालबा जो इताअत है तभी पूरा हो सकेगा। और दूसरी आफत जो खासतौर पर उलमा ने बयान की है वो है गैर मुसद्दका मसाइब या फजाइल का जिक्र, अनऑथेंटिक, ये झूठी बातें अक्सर मसाइब के अंदर पेश की जाती। देखिए जुमला बहुत अहम है, इसको अभी गौर कीजिएगा इस जुमले पर कि मुकद्दस हदफ कभी गैर मशरू वसीले के जवाज का सबब नहीं बनते। मुकद्दस हदफ, हदफ अगर मुकद्दस हो तो यह नहीं कि हम गैर शरई वसीला अख्तियार करें उस मुकद्दस हदफ को तक पहुंचने का, क्योंकि अगर मकसद मुकद्दस है तो अब हम वसीले के तौर पर झूठ का सहारा लें उस तक पहुंचने के लिए। मकसद अगर मुकद्दस है मसलन जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करना तो उससे हम प्राइवेट प्रॉपर्टी और इमलाक को नुकसान पहुंचाने लगे, इसी तरीके से फजाइल और मसाइब के अंदर झूठी बातों का सहारा लेने लगे। ये वो बातें हैं जो कि आजादारी के अंदर बहुत से जाकिरीन ने मजालिस के अंदर शामिल कर दी हैं, और इन बातों को मुहद्दिस नूरी ने जो लोलू व मरजान जो कि नामी किताब है, इसमें 100 साल पहले मुहद्दिस नूरी को बहुत रुलाया। बहुत सी बातें ऐसी हैं, जनाब इमाम हुसैन के नेजे की लंबाई जो है वो 60 हाथ के बराबर थी, और यजीदी फौज जो थी जो इमाम के मुकाबले में आई थी उसमें 6 लाख तो सवार थे और 8 या 10 लाख प्यादा अफराद थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसमें से 3 लाख अफराद को कत्ल किया। ये तमाम वो बातें हैं, या हजरत अब्बास ने 25,000 लोगों को कत्ल किया। उलमा बयान करते हैं कि ये वो बातें हैं कि जो सरीहन झूठ है, यानी इस तरह की चीजें जो जेब दास्ता के लिए बड़ा जो सही तौर पर साबित हैं, वो एक यजीदी लश्कर जो है या तो 30,000 का था या 80,000 या बहरहाल 1 लाख से मुतजावज नहीं था, जिसमें 6 लाख और 8 लाख प्यादा और सवार और मिला के बहुत बड़ी तादाद एक बनाई जाती। और जो सही रिवायत से बात साबित है कि इमाम ने रोजे आशूर 1800 यजीदी लश्करियों को कत्ल किया है, ये जो बाकी है जो कि 3 लाख, और ये इसमें बहुत सारी देखिए फजाइल और मसाइब दोनों के अंदर बहुत सी सरी झूठी चीजें शामिल कर दी गई। अच्छा, कुछ बातें अलबत्ता ऐसी जरूर हैं कि जो झूठी नहीं है या वो साबित नहीं हो सकी, तो हम इसको झूठा नहीं कह सकते, लेकिन सही तौर पर साबित नहीं हुई, उसमें तहकीक हो सकती, लेकिन जो 100% गलत बात है उसको तो रोकना चाहिए। देखिए, आप एक चीज लोगों के दिमाग में एक चीज और आती है, वो ये है कि किसी भी रिवायत के जिक्र करने का मेयार ये नहीं है कि वो किसी किताब के अंदर लिखी हुई मिल जाए। अक्सर होता है फेसबुक पे मुख्तलिफ अहादीस लगाते हैं तो लोग कहते हैं भाई रेफरेंस दे दीजिए, रेफरेंस अगर हम कोई सा भी डाल दें, फला किताब फला सफा नंबर, यकीन कीजिए कि लोग जरा सा भी देख बस मुतमईन हो जाते हैं, हाँ रेफरेंस दे दिया। उलमा बयान फरमाते हैं मुमकिन है कि कोई सही बात किसी गैर मारूफ किताब में हो, और यह भी मुमकिन है किसी मशहूर तरीन किताब के अंदर गलत बात हो। अलबत्ता जो मसाइब की जो मोतबर किताबें हैं उनसे मसाइब को खासतौर पर, अब तो क्योंकि सब तकरीबन मोतबर किताबों का उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है, तो जिसमें नफसुल महमूम जो शेख अब्बास कुम्मी की है और लहूफ जो इब्ने ताउस की है इसका भी उर्दू तर्जुमा हो चुका है, यह मक्तल जो अभी मखनफ की है उसका भी तर्जुमा हो चुका है, या बिहारुल अनवार की जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जो मुश्तमिल जिल्द है उसका भी तर्जुमा हो चुका है, या मक्तल मुतहर शहीद मुतहरी की, वो भी बहुत अच्छी किताब है, वो भी उर्दू में तर्जुमा हो चुकी है, या मक्तल हुसैन जो अब्दुल रज़ाक अल मुकर्रम की किताब है, ये सब ऑथेंटिक किताबें, उसका फारसी और उर्दू तर्जुमा वो भी हो चुका है, अब्दुल रज़ाक अल मुकर्रम ये उनकी तस्वीर है। तो अब तो तकरीबन सारी ही उसके अंदर इस तरह की जो है किताबों के तराजिम हो चुके हैं, तो उसमें से ऑथेंटिक मसाइब लेकर वो अपनी तकारीर के अंदर आप शामिल करें। उसके बाद एक और चीज है जिसको आफत कहा जाता है, वो है बेअसास तालीमात और ख्वाब की बातें वगैरह, अनऑथेंटिक किस्म की चीजें जो है जिक्र करना, जो मतलब विदा के दिन मसलन कजाए उमरी की नमाज बाकायदा जाकिरात पर्चे जो है फोटो कॉपी करवा के ला के मजालिस में तकसीम करवाती, कि ये जो 2 रकत 4 रकत या जितनी भी वो रकत नमाज है जो कोई भी पढ़ लेगा तो सारी जिंदगी की पिछली कजा नमाजें माफ हो जाएंगी, यानी जो बिल्कुल इस किस्म की बातें हैं जो बेअसास किस्म की तालीमात हैं वो लोगों के दरमियान इंसान पेश करता चला जाए, या बहुत सारे झूठे ख्वाब ऐसे हैं आइमा की हर कसो नाकस से ख्वाब मुलाकातें, खासतौर पर देखिए आयतुल्ला वहीद खुरासानी वो बयान करते हैं कि जमाने गैबत कुबरा में जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं इसमें मुलाकातें इमाम 2 तरह से मुमकिन होती, एक को कहा जाता है इख्तियारी हालत और एक होती है इस्तेरारी तौर पर इमाम से मुलाकात। वो कहते हैं इख्तियारी तौर पर इमाम से मुलाकात, क्योंकि कोई शख्स खुद बढ़कर जब चाहे इमाम से मुलाकात कर ले, ये सैयद इब्ने ताउस जैसे अफराद से मखसूस है, वो जब चाहते थे मिल लेते थे। और जो इस्तेरारी है कह रहे हैं वो बहुत सारे लोग महावादिस मुसीबतों और मुश्किलात में जब गिरफ्तार होते हैं और दिल से इमाम को पुकारते हैं तो इमाम उनसे जब भी मुतवस्सिल होते हैं इमाम से लोग, तो इमाम उनसे मिल लेते हैं, इस्तेरारी हालत। और कहा कि अलबत्ता वो अफराद के जो अपने लियाकत और अपने बुलंद किरदार की वजह से दीदार इमाम का फैज हासिल करते हैं, उनमें तमाम अफराद वो होते हैं जो इस बात का किसी और से जिक्र नहीं करते, जो इस तरह से दावा नियाबत और सिफारत या इमाम से मुलाकातें फ्रीक्वेंटली लोगों में बयान कर रहा है, वो दलील इस बात की है कि इसकी इमाम से मुलाकात नहीं हुई। तो इस किस्म की बहुत सारी चीजें ऐसी कि ईरान के अंदर बहुत सी ऐसी मुलाकातें इमाम पर मुश्तमिल किताबें जो बेअसास किस्म की थी बाकायदा उनको जलाया गया, वो फितना फैला रही थी, हर कसो नाकस इस बात का मुद्दा ही था कि इमाम जमाना मुझसे मुलाकात करते हैं, मेरे साथ नाश्ता करते हैं, मेरे साथ रोजाना वो मुलाकात होती, इस तरह की बातें। तो एक तो चीज ये, दूसरी बल्कि कहा कि ऐसे जो अफराद हों लोग उनका बॉयकॉट करें बाकायदा। एक और आफत जो इसके अंदर है वो गुलू और तफवीज। देखिए फजाइल की रिवायत का भी किसी किताब में फकत लिखा हुआ होना काफी नहीं, जब तक कि वो कुरान और मुसलमात इस्लाम से मुतसादिम ना हो उस वक्त तक तो बयान किया जा सकता है, लेकिन अगर इस्लाम से मुतसादिम हो रही है वो फजाइल की रिवायत तो फिर बयान करने की इजाजत नहीं। कसौटी इल्म पे बाकायदा रिवायत को परखा जाता है, जिरह तादील उनकी होती है या उनकी कोई तावील की जाती है। बाकायदा हमारे आठवें इमाम इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम ये बाकायदा उलूल अखबार रजा में फरमाते कि हमारे मुखालिफिन ने हमारे फजाइल के सिलसिले में बहुत सी रिवायत घर रखी। देखिए जुमला इमाम का, हमारे मुखालिफिन ने हमारे फजाइल में बहुत सी रिवायतें घर ली जिनको तीन हिस्सों में तकसीम किया। पहला ग्रोह है जो कि गुलू के ऊपर मुश्तमिल है, दूसरा रिवायत का ग्रोह है जो तकसीर या इमाम की जो मुकाम है उसको कम करने के लिए वो ऐसी रिवायत घड़ी गई, और तीसरा है हमारे दुश्मनों को बुरा भला इस तरह से कहा गया है कि जिससे उनके उयूब आश्कार हुए। देखिए बाज़ औक़ात इस तरह से अगर बयान की जाए तो माशरे के अंदर एक फसाद भी बर्पा हो जाता है। तो इस किस्म की भी बहुत सारी रिवायतें माशरे के अंदर लोग यानी तबर्रा हमारे ईमान का लाजमी जुज है, लेकिन इस अंदाज से करना जो कि आजकल कुछ जगहों के ऊपर सूरत हाल होगी, जिससे नफरतों में इजाफा हो रहा है, जिससे कत्ल गारत गरी में इजाफा हो रहा है, दुश्मनियां आपस में पैदा हो जाए, इस चीज को इमाम ने रोका। और बाकायदा छठे इमाम से जब अर्ज किया गया कि फरजंद रसूल हम मस्जिद में एक शख्स को देखते हैं जो खुल्लम खुल्ला आपके दुश्मनों का नाम लेकर सब वो शैतान और लाना तो तबर्रा करता है, तो इमाम ने फरमाया इस मलाउन को क्या हो गया है कि वो हमें खतरे में डालकर लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है, हालांकि खुदा का इरशाद है और अल्लाह को छोड़कर जिन्हें ये पुकारते हैं उन्हें बुरा मत कहो, वो वादा वो अदावत और नादानी में अल्लाह को बुरा कहने लगे। सूरह नाम की जो रिवायत आयत इमाम ने पेश की, और उसके बाद इमाम ने इसकी तफसीर में इरशाद फरमाया कि उन लोगों पर सब्बो शतम मत करो वरना वो तुम्हारे अली पर सब्बो शतम करें। तो इस तरह से करना, इस तरह से तबर्रा करना कि जिससे फसाद के अंदर इजाफा हो, यह बहुत सी जगहों के ऊपर लोगों का एक तरीकेकार बन गया, और बहुत सारी रिवायत के अंदर इससे बहुत शिद्दत के साथ मना किया गया, और गालियों के पास अपने नौजवानों को बैठने से मना किया है, और कहा है कि खुदा की कसम ये जो गाली हैं ये यहूदियों ईसाइयों मजूसियों और मुशरिकों से भी ज्यादा बदतर, यानी खुदा की को खुदा के उसकी अहमियत को कम करके और बंदों की रबूवियत का ये लोग दावा करते हैं। और यही वजह है कि आयतुल्ला साफी गुलपायगानी मौजूदा मराजे में से आयतुल्ला साफी गुलपायगानी ये फरमाते हैं कि जब आयतुल्ला ब्रोजर्दी हुआ करते थे और हयात थे, और उनकी मौजूदगी में जब एक कसीदा ख्वान ने गुलू की हद तक उठा लीजिए किसका है गुलू की हद तक जो है उसके अंदर कसीदा ख्वानी की है अपने कसीदे के अंदर, तो एक शेर उसने कहा था, वो शेर तो मुझे मालूम है लेकिन शर्मिंदगी वो शेर इस कसम का है कि वो बयान नहीं हो सकता, इंतहा उसको फौरन दरमियाने कसीदे से आयतुल्ला ब्रुजर्दी ने रुकवा दिया और कहा कि गुलू के बारे में हमेशा सख्त मौकफ अख्तियार करना चाहिए, सख्त मौकफ होना चाहिए। और उलमा ने बाज़ औक़ात कहा है कि गुलू के मुकाबले पर हम किसी भी मसलियत को बाले ताक रख देना चाहिए, और खास तौर पर इसमें बुजुर्गों की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, जहां कहीं ये देखें वो बार बार ऐसे जाकिर को टोके जो इस तरह से गुलू और तफवीज की बातें जो कर रहा हो, आइम्मा को खुदा बना रहा हो, खुदाई तौर पर मुख्तलिफ चीजें जो हैं उनको लोगों के सामने इस अंदाज से पेश कर रहा हो, तो आपको چاہیے کہ ہمیشہ ایسے افراد کو شروع میں روک دیں. جب دیکھیں گے دو چار افراد اس طرح سے بزرگ حضرات آگے بڑھ کے، تو بیان کرنے والا بھی ڈرے گا اور اس قسم کے مطالب نہیں تیار کر کے لائے گا. اچھا اب جو ہے اس سلسلے میں ایک چیز آپ کو دکھا دی جائے. اس میں یہ بات یاد رکھ لیجیے، ہم یہ جو کوئی بھی چیز آپ کو دکھاتے ہیں اس میں ضمناً معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح کی چیزیں بہت ساری آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس میں مقصد کسی کی شخصیت کے لحاظ سے تنقید کرنا مراد نہیں ہوتی. ہم صرف اس بات کو کہ جو کہ غلط ہے، جو کہ غلو پر مشتمل ہے، جس سے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اسلام کے متعلق شیعت کا جو ہے چہرہ داغدار ہوتا ہے، اس طرح کے مطالب یا اس طرح کی شاعری کرنا صرف وہ بیان کرنا مقصد ہے. آپ سنیے کہ بہت ساری شاعری جس انداز کی ہو رہی ہے.
ذرا سا کیا موسم کر دیا اس نے، شک ہو جسے حیدر کے ولایت میں، ذرا سا شبیر کے بارے میں یہ کہتے ہیں نوشہری. اپنا اپنا انداز ہے سوچنے کا. شبیر کے بارے میں خبر رک، مجھے عشق ہے اس شعر سے. شبیر کے بارے میں یہ کہتے ہیں نوشہری، اللہ کا بیٹا ہے محمد کا نواسا.
تو آپ دیکھیں ہر جگہ اللہ کا بیٹا، تو وہ بار بار جو ہے امیر المومنین کو اللہ کی طرف جو ہے نسبت دینا چاہے وہ نوسیریوں کے حوالے سے کیوں نہ بات کی جائے. جن سے امام شدید ترین نفرت کرتے تھے، جن کو قتل کرتے تھے، ان کا اس انداز سے، تاریخی انداز سے شاعری کے اندر ذکر کرنا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟
کیا کیا نواسا ہے؟ اللہ بچائے مجھے ہر شرک سے شوکت، ویسے یہ نوسیری کا خدا ہے تو خدا سا.
اچھا اب کیا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ نظریات بن جاتے ہیں لوگوں کے، چاہے وہ شاعری کے ذریعے کیوں نہ.
جسے سمجھ آ گئی علی نے، میں نور جلی نور نبی حق کا ولی ہوں، اور میں کتنے مرا، ایک بار بھی اللہ نہ کہا خود کو علی نے، اللہ نے کئی بار کہا ہے میں علی ہوں.
یعنی اب جو ہے اس سے بھی ان کی شان بڑھا دی گئی، اللہ سے بھی اوپر لے جایا گیا کہ علی نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں علی ہوں. چاہے وہ شاعری یا مثلا جو ہے مبالغہ آرائی کرتے ہوئے، لیکن لوگوں کو پیغام اس سے یہی چیز ملتا ہے.
جڑے عقیدہ سننے دے وہ بولا ہائے،
تھوڑا سا تذکرہ، تھوڑا سا فضائل اس شہزادی کا جو وجود میں باپ سے پہلے.
اب اس میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو شہزادی کونین ہیں وہ وجود میں پیغمبر اسلام سے بھی پہلے ہیں. دیکھیں بالکل کوئی غلط نظریہ، جبکہ پیغمبر خود کر فرما چکے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا.
دکھ لگا سننے سے، اس کے پاس عقیدہ تھا اور سن کر گیا، میری شہزادی وجود میں باپ سے پہلے ہے، ظہور میں باپ کے بعد. بھائی میں اس سننے کا نہیں دماغ آتا، مشکل باپ نہیں ہوں بتنا مجھے. اب نہیں ہے میری مانڈا اگر اس کی صاحب کے پوری مملے بولے گی تو میں بڑھا کے بولے ہوں گا نا 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 نا، بس جو ہو گیا مالک یہی کرم پڑا ہے. وجود میں باپ سے پہلے ہے، ظہور میں باپ کے بعد ہے. وجود میں باپ سے پہلے نہ ہوتی، باپ کبھی بیٹی کو ماں نہ کہتا.
یعنی جو ام ابیہا پیغام جو ان کا لقب ہے، وہ اس وجہ سے کہ جس طرح سے ایک ماں جو خیال رکھتی تھی پیغمبر اسلام کا، اس طرح سے خیال رکھتی جیسے ایک ماں رکھتی، اس وجہ سے اپنے باپ کی ماں ان کے لقب کے طور پر بات مشہور ہے ام ابیہا. اس کو اس بات سے جو ہے استدلال کیا جا رہا ہے کہ وہ وجود میں باپ سے بھی پہلے، ورنہ پیغمبر جو ہے ان کو ماں نہ کہتے مسیح. تو اب یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں. اچھا اب لوگوں کے اس انداز سے پھر عقیدے بن جاتے ہیں.
میں کہہ رہا ہوں ماں سوائے ضرورت تبلیغ دین کے، جس بیوی کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا بھی ضروری نہ ہو. بیوی کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا بھی ضروری نہ ہو، اسے شریعت میں قبول کر.
یعنی ابھی کے نظریے اس انداز سے پھیلائے گئے کہ ان کو وضو کی ضرورت نہیں تھی، بس ایسی لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے بتانے کے لیے جو ہے وہ کیا کرتی تھی. اچھا اب دیکھیے لوگوں کا نظریہ کیسے جو جوش و جذبات میں آ کر کھڑے ہونے، بات اتنی سادہ نہیں ہے. اب ان کا بھی نظریہ دیکھیں کیا ہو جاتا ہے، سنیے گا.
قدم قدم پہ خط اختیار لگتا تھا، وہی تو نظم لیل و نہار لگتا تھا، نصیریوں کی نظر کا کوئی قصور نہیں، علی تھا ہی ایسا کہ پروردگار لگتا تھا.
نوسیریاں کوئی قصور نہیں، حضرت علی لگتے ہی پروردگار ہیں اس وجہ سے. تو اس طرح کی تمام باتیں یہ بہت ایک خوفناک ایک رویہ جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہیں. تو آیت اللہ بروجردی ہمیشہ اس قسم کی باتوں کے سلسلے میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ بات یاد رکھ لو کہ اس میں ہمیشہ سخت موقف جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا. اچھا اس سلسلے میں دیکھیے جو شاعر حضرات ہیں، سب شاعر نہیں، بہت سے تو بہت خدمات انجام دی ہیں، لیکن آج کل اکثر بے مقصد قسم کی شاعری ہو رہی ہے اور اس قسم کی غلو کو شاعری کے اندر بہت پھیلایا گیا. دیکھیے ہمارے آئمہ علیہ السلام جو تھے بہت سے شاعروں کے سلسلے میں بہت خاطر و مدارات ان کی کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ شاعر امام کے صرف چشم و ابرو اور ان کے قد و قامات اور ظاہری حسن وغیرہ کے سلسلے میں اشعار کہتے تھے، اور باقاعدہ چوتھے امام کمیت اسدی کے لیے یہ بات کہا کرتے تھے اور بڑی آؤ بھگت کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ تمہارا کام اور تمہارے اشعار ایسے ہیں کہ جن کا صلہ دینے سے ہم عاجز ہیں، اور خدا تم کو اس کا صلہ دے گا. اور چھٹے امام نے کمیت کے سلسلے میں بات کہی تھی، ایک کمیت بلکہ کمیت کے لیے ایک دعا کی تھی کہ اے پروردگار کمیت کے سارے اگلے پچھلے گناہ جو ہیں جو اس نے آشکار کی ہوں چاہے تنہائی میں کیوں، ان سب کو بخش دے اور اسے اتنا عطا کر کے وہ راضی ہو جائے. اب دیکھیے کیا تھا کمیت کے اشعار میں، کمیت ایک شائستہ اور ایک ذمہ دار شاعر تھے. 578 بیتوں پر مشتمل ہاشمیات کے نام سے پورا قصیدہ ہے کمیت کا، جس میں اہل بیت کی شناخت، بنو امیہ کے مظالم اور اسلامی حکومت کے عدل کے خد و خال اس کے اندر بیان کیے گئے. اور اس کے آخری جو شعر ہے اس قصیدے کا، اس میں کمیت کہتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول، میں اپنے گفتار و کردار سے جہاں تک میری توانائی اجازت دے گی ہر اس چیز سے دوری اختیار کروں گا جس میں آپ کی رضامندی شامل نہ ہو. یعنی عمل کی بات کرتے تھے اس کے اندر اور اپنی شاعری کے اندر. اسی طرح سے مثلا فرزدق تھے، ان کی کتنی تعریف بیان ہوئی ہے. اسی طرح سے دیبل خزائی جو تھے ان کی ہے، اس کے علاوہ حمیری ہیں، ان کی بہت آؤ بھگت کی وجہ یہی تھی. ان کو جب بھی سزائیں دی جاتی تھیں حکام وقت کی طرف سے، اور آئمہ اہل بیت جو تھے ان کو ایسی مجالس اور ایسی محافل سے اونچتا جہاں باقاعدہ ان کے مکتب کا احیاء کیا جائے. تو ہماری مجالس کے اندر دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ ان صفات کا، ان کمال کا تذکرہ نہیں ہوتا کہ جن کی بنا پر آئمہ نے یا امام حسین نے اپنے اصحاب کا انتخاب کیا تھا تاکہ ہم بھی وہی صفات اور خصوصیات اپنے اندر پیدا کر لیں. ان صفات کا تذکرہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اندر بھی وہی جوش و جذبہ پیدا ہو. یہ عورتوں کو جو ساتھ لے کے گئے تھے، علماء بیان فرماتے ہیں ان کو، ان عورتوں کو بخوبی پتا تھا کہ ہمارے شوہر، ہمارے بھائی، ہماری آل اولاد سب مارے جائیں گے مگر اسلام زندہ رہ جائے گا. یہ عقیدہ ان کے لیے بہت اطمینان کا باعث تھا. سب سمجھ رہی تھی اچھی طرح سے کہ امام بار بار ہر منزل پر رک کر جو کلمہ استرجہ انا للہ و انا الیہ راجعون جو پڑھا کرتے تھے، سمجھ رہی تھی کہ اب کیا ہونے والا. لیکن اتنی بردبار، اتنی صابر، اتنی بے خوف، اتنی نڈر وہ خواتین تھی، کسی حال میں یاد خدا سے غافل نہیں تھی. یہ بیان کریں لوگوں کے سامنے تاکہ لوگوں کے اندر بھی بلند ہمتی پیدا ہو. بہت سے علماء کا تو یہ طریقہ کار ہے ایران کے اندر کہ وہ پہلے مصائب بیان کرتے ہیں، اس کے بعد درس اور مجلس شروع کرتے ہیں. محقق کبیر، ان کے متعلق ہے کہ جب درس خارج دینا چاہتے تھے شروع میں چند احادیث اخلاقی سناتے تھے، پھر امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھتے تھے، اور جب لوگ خوب رو رلا لیتے تھے پھر اس کے بعد درس شروع کر دیتے. بہت سے لوگوں نے اپنا طور طریقے بدل لی. علامہ غلام عسکری پہلے اسی طرح سے تبرع والی کھلم کھلا اور اس طرح کی مجالس پڑھا کرتے تھے، بعد میں کہنے ایک دفعہ میں نے احساس کیا کہ کتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا وقت ان لوگوں کا ہے، اگر قیامت کے ان مسئلے ان میں سے کسی کا اگر وضو غلط نکلا اور اس کی ساری عبادات غلط ہو گئی، اس سے پوچھا گیا تو وہ کہے گا کہ میں تو جایا تو کرتا تھا ان مجالس میں، اب جب وہاں پہ عالم نے اور ذاکر نے بتایا نہیں تو پھر مجھے کیسے چیز پتا چلتی. بس وہ تھا کہ ان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا، اس کے بعد پوری جو مجمع اگرچہ لیا کرتے تھے وہ مجمع آدھے سے بھی کم رہ گیا، لیکن کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اپنا فریضہ ادا کرنا. تو اب دیکھیے بہت سی چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں کہ اب ہمیں مختصر، اب اتنا وقت بھی نہیں تھا، مجھے معلوم ہے کہ آج آپ لوگوں کا پیپر بھی ہے، جلدی چھوڑنا ہے آپ کو، کہ مجلس اعضاء ایک مثالی طور پر ہم کیسے برپا کریں. تو سب سے پہلے تو دیکھیے کوشش کریں کہ بعض وقت جو اشتہار مجلس ہوتا ہے نا، اخبار وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، اخبار میں ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ جو پمفلٹ ٹائپ کا جو آپ لوگ فوٹو کاپی کروا کے یا پرنٹ کروا کے تقسیم کرواتے ہیں، اس کے اندر کوشش کریں کہ ایسی احادیث اخلاقی، ایسے امر بالمعروف پہ مشتمل احادیث، وہ آپ اس پروگرام کے ساتھ جو مجلس کا ہے پورا اس میں لکھوا کے، تاکہ اشتہار مجلس سے ہی مقصد امام حسین شروع ہو جائے. اور صرف یہی نہیں بلکہ گھر کی جو سیٹنگ آپ کریں گی وہ بھی اس انداز کی ہونی چاہیے کہ در و دیوار پر مثلا آپ کوشش کر کے، آپ کو پتہ ہے نا کہ ایام عزا آنے والے ہیں، پہلے سے ایسی بہترین احادیث جو آپ کو ہمارے اس پہ فیس بک وغیرہ کے اوپر بھی اس میں سے ابھی آپ لے سکتی ہیں، یہاں سے مدرسے سے بھی اس کے لے کے آپ پینافلیکس کے اوپر بنوا کے، یعنی پورا جو عزا خانہ یا وہ کمرہ جس کے اندر ہو اس کی دیواروں پر وہ حدیثیں لکھی ہوں، تمام عورتیں آئیں گی پڑھیں گی، اثر ہوگا، یعنی در و دیوار سے تبلیغ جو ہے دین کی ہو رہی اور امام حسین کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو رہا ہو. اور اگر کوئی یہ کروانا مشکل ہے، پیسوں وغیرہ کوئی مسئلہ ہے، تو آپ خود بھی کوئی بڑے کاغذ لے لیں، اس کے اوپر اچھا سا خوشخط جو ہے مارکر وغیرہ سے وہ احادیث یا پرانی آیات لکھ کر کے، جس میں جس سے لوگوں کی کردار سازی ہو، وہ لکھ کر اپنے گھروں پر اس انداز سے لگائیں تاکہ مقصد امام حسین در و دیوار سے ہی جھلکنے لگے. اچھا اسی طریقے سے بہت سے ذاکر اور ذاکرہ، اچھا یہ تھوڑا سا اس کے اندر اسپیلنگ مسٹیک ہے، ایسا انتخاب کریں جو واقعی پہلے سے اسے ڈسکس بھی کر لیں، بلکہ ایسے موضوع کا بھی انتخاب اس سے کر لیں کہ عام طور پہ بس ایک ایک کسی بھی ذاکر یا ذاکرہ کو لانا پھر وہ جو بھی پڑھ کر چلا جائے، نہیں، آپ کو احساس کرنا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے، آپ کہتے ہیں بھائی اس موضوع کے اوپر آپ کو تیاری کرنی، اس سے ڈسکس بھی کر لیں، اچھا آپ کیا کیا چیزیں بیان کریں گے، پہلے سے یہ بات ہونی چاہیے، اتنا بڑا پروگرام اور ارینج کر رہی ہیں کیا فقط ایک فارمیلٹی کے طور پر ہو رہا ہے یا واقعی اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اگر مقصد ہوگا آپ کے دماغ میں امام حسین کے قیام کا اور آزاداری کا صحیح معنوں میں، تو آپ اس سے ڈسکس کریں گے کہ موضوع مجلس آپ نے کیا رکھا، کس موضوع پہ اس کو پڑھنا ہے، بلکہ کچھ چاہیں تو اس کو مواد بھی مہیا کر دیا جائے، اگر چھوٹے لیول کا کوئی ذاکر یا ذاکرہ کا آپ ارینجمنٹ کر رہی ہیں. تو ہاں اگر کوئی عالم آ رہا ہے جو کہ پریفریبل ہے، تو عالم کو تو آپ دو تین سوالات بھی جو مورد ابتلاح پہلے سے پرچے کو پر لکھ کے دے دیں کہ مجلس کو شروع ہونے سے پہلے آپ چند ایک سوالات کا، فقہی سوالوں کا بھی جواب دے دیجئے، پھر اس کے بعد مجلس شروع ہو جائے تاکہ لوگوں کی معلومات میں کچھ تو اضافہ ہو. اچھا اسی طریقے سے ایسے اصلاحی موضوعات اس کے اندر، پھر تبرک کے سلسلے میں ایک بات ہے کہ تبرک میں بھی کچھ چیزیں اضافے یا تبدیلی جو ہے اس کے اندر ہونی چاہیے. اور مثلا بہت سی کتابیں ہیں کہ جو کہ آپ اس میں بٹوا سکتی ہیں تبرک کے طور پر، کچھ بکلیٹ ہیں وہ بٹوا سکتی ہیں، نماز کی چادریں جو ہیں وہ آپ تبرک کے طور پر دے سکتی ہیں، کتنی عورتوں کی آپ نے دیکھا ہے دوپٹے وغیرہ میں نماز پڑھ رہی ہیں، بال نظر آ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر لپیٹ لپاٹ کے جو خواتین پڑھتی ہیں، تو آپ ایسی چادروں کا ارینجمنٹ کروا سکتی ہیں، جب تک پھر وہ نمازیں پڑھتی رہے گی آپ کو ثواب ملے گا. پردے کے موضوع پر آپ تقریر کروا دیں پہلے خاتون سے اس قسم، پھر اس کے بعد اس میں احساس دلایا گیا ہو کہ آپ کو نامحرم کے سامنے موزے پہننا ہے یا پاؤں چھپانا ہے، سلیوز آپ کے جو ہے عام طور پر کلائیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور تبرک میں آپ جو ہے مثلا موزے اور سلیوز ایکسٹرا طور پہ کھانے کھلانے کے ساتھ بھی آپ دے سکتی ہیں. ایسی اچھی اصلاحی مجالس پر مبنی مجالس کی ڈی وی ڈیز اور سی ڈیز یہ آپ تحفے میں اس میں تبرک کے طور پہ دے سکتی ہیں، کیسٹس دے سکتی ہیں، ہاتھ سے لکھا ہوا کوئی ہینڈ آؤٹ ہے اگر آپ یہ نہیں افورڈ کر سکتی تو کچھ لے کے فوٹو کاپی کرا کے وہ تقسیم کر سکتی ہیں. اب بہت سی چیزیں دیکھیے بعض وقت خود ستائی میں آ جاتی ہے، اچھا تو نہیں لگتا لیکن ایک بیان کرنے کے لیے، خدا نہ خواستہ اس سے کوئی ریاکاری وغیرہ مقصد نہیں ہے، کہ جب میڈیکل کالج کے ابتدائی پہلے سال میں تھا تو میرا ایک طریقہ کار تھا جو ہمارے پورے اس میں شیعہ طالب علم ہوتے تھے، میں ایک پرچے کے اوپر 5-10 فقہی مسئلے لے کر کاغذ پہ لکھ کے اس کی فوٹو کاپیاں کروا کے جن جن سے افراد سے ملتا جاتا تھا انہیں ایک ایک کاپی دے دیتا تھا، ہر ہفتے یہ کرتا تھا. तो लोगों ने कुछ अरसे तक तो शुरू में अजीब सा लगा, लेकिन बाद में लोगों ने कहा इससे तो हमें बहुत अच्छी अच्छी मालूमात मिली। तो सिर्फ एक बयान करने के लिए कि इंसान कुछ तो इब्तदा करे, कुछ तो आगे की तरफ जो है मामले को अपने आगे इस तरह से बढ़ाए। अच्छा, फिर उसके अलावा अब देखिए तबरुकात जितने भी हैं जो इसके अंदर तबरुक वगैरह मिलते हैं उसमें उस ये नहीं कि जो भी तबरुक दिए जा रहे बड़े हम उसको वो करें, नहीं, कितने मुजरे सेहत तबरुक आप बांटती हैं उसके अंदर। बहुत से ऐसे हैं कि इतने इतने घी और तेल की पूरी पूरी लेयर्स उसके ऊपर होती हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे एक दोस्त कहते हैं बड़ा अच्छा कि हार्ट अटैक जो है वो आप तकसीम कर रहे हैं ये सब। तो वो जो है गंदे तेलों के अंदर पकी हुई चीजें, कब इमाम हुसैन जो है ये कहेंगे कि अनहाइजेनिक या मसलन जो है वो गंदे तेलों के अंदर पकी हुई चीजें आप लोगों को मेरे नाम के ऊपर खिलाएं? इमाम हुसैन कभी राजी नहीं होंगे कि जिसको खाकर हजार मजीद बीमार से बीमार होते चले जाएं। एक तालिबा ने मुझे लिखकर भी एक बड़ी अच्छी तजावीज जो है वो दी थी कैटरिंग वालों के सिलसिले में कि उनको किन बातों का ख्याल करना चाहिए, वो मैं उनसे मुलाकात नहीं कर सका, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी वो तजावीज दी और वाकई उसको प्रिंट करवा के और ऐसे कैटरिंग सर्विस वालों को जो दी जाए ताकि वो उनको एहसास हो कि क्या कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा इसका एहसास है खिलाने पिलाने का और ये आप करना चाहते हैं तो ठीक है, फिर उनको अच्छा तेल मुहैया करें, अपनी निगरानी में उनसे जो है वो बनवाएं, कोशिश ये करें कि किसी मोमिन से ही जो है ये तमाम चीजें पकवाएं, बनिस्बत ही कि यानी जो दुश्मनाने अहले बैत हैं बाज़ औक़ात उनसे ही सब चीजें करवाई जाती हैं, उनको माली फायदा पहुंचाया जाता है, अपने अफराद उनको गाइड करें कि तुमको वजू करके अच्छा बिस्मिल्ला पढ़कर और हम अच्छी चीजें प्रोवाइड करेंगे ताकि मोमिनीन के जो सेहत इससे खराब ना हो, कोशिश करें कि तबरुकात को सादा रखें, यानी बहुत ज्यादा रोगनी और जो उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें ये ना हो उसके अंदर, और इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसी तरह से ये भी होना चाहिए कि मजालिस अज़ा में जो भी जाकिर या जाकरा हो उससे पहले 10 मिनट का किसी भी बच्चे से आप ये कहें कि वो भी वहां पर आकर कुछ मजलिस वगैरह जो है वो पढ़ ले ताकि उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो इस तरह से बहुत सारी देखी चीजें ऐसी हैं, तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जिससे लोगों की तरबियत होती। और इमाम खुमैनी का बड़ा अच्छा जुमला है कि इस्लाम को जिस चीज ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो तरबियत का फुकदान, सबसे ज्यादा नुकसान जिस चीज ने पहुंचाया। तो देखिए इस तरह से इसमें बुजुर्ग अफराद की जिम्मेदारी ज्यादा है, जहां वो गलती है इस तरह से देखें तो बाकायदा डिस्कस करें, बाकायदा वो लोगों के सामने इस चीज को लेकर आए और इसके अंदर आहिस्ता रवि के साथ काम करें। एकदम से कोई इनकलाब लाने की जरूरत नहीं इसमें, मरहलेवार पहले नसीहत हो, मुआवजा हो, फिर डिस्कशन हो, ग्रुप डिस्कशन हो, मसलन ड्राइंग रूम के अंदर गुफ्तगू के अंदर इस बात को, खाने की मेज और दस्तरखान पे वाली गुफ्तगू करें भाई इस तरह की मजालिस इसके अंदर इस अंदाज से होनी चाहिए। तो क्या होगा कि इससे हठधर्मी में भी इजाफा नहीं होगा, अलबत्ता ये कि फिर बुजुर्ग हजरात इसमें ज्यादा बोलें, बाज़ औक़ात इस तरह की चीजों में जरा जो है बुरा भला सुनना पड़ जाता है तो इस्तेकामत दिखानी होती। तो बहरहाल अब कोशिश ये करें एक और चीज के भी, 2 महीना 8 दिन मुहर्रम रहेगा, बस आखिरी जुमले हैं, 2 महीना 8 दिन मुहर्रम रहेगा, आप कैलेंडर के ऊपर बाकायदा मार्क करें, कैलेंडर के ऊपर आप बाकायदा मार्क करें कि मैं एक एक इखलाकी बुराई को आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर से निकालूंगी और एक इखलाकी सिफत का इजाफा करती जाऊंगी। बाकायदा 2 महीना 8 दिन की पूरा आपके पास एक चार्ट होना चाहिए, फिर कहा जाएगा कि आपने वाकई सही तौर पर इस्तकबाल मुहर्रम के सिलसिले में काम किया। और फिर वरना ऐसा नहीं हो कि ये मुहर्रम भी पिछले मुहर्रमों की तरह से ऐसे ही गुजर जाए, हम वैसे के वैसे ही तही दामा और अखलाको किरदार से आरी बदनसीबों की तरह से रह जाए। रिवायत में है कि जब चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब इमाम करबला से मदीना वापस लौटे तो एक शख्स ने आकर कहा कि ए फरजंदे रसूल आप गए तो क्या हुआ। अच्छा, उसकी बात भी सही थी, जब कारवान शुरू में गया था तो सब थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कयादत कर रहे थे, एक से एक बढ़कर शुजा मौजूद था, अब्बास थे, अली अकबर थे, कासिम थे, असहाब रसूल थे, असहाब आइम्मा थे, अब ना इमाम हुसैन है, ना अली अकबर है, ना कासिम है, ना 6 महीने का बच्चा वापिस आया है, वापिस आया है तो फकत कारवान का एक मर्द वापिस आया है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कहा मौला आप गए तो क्या हुआ। इमाम ने फरमाया तुम ये भी तो सोचो कि अगर हम ना जाते तो क्या होता, यानी हम ना जाते तो हमारे जिस्म तो सलामत रह जाते मगर हमारी रूह का वजूद भी नहीं होता, लोगों के जमीर मर जाते, अकल और मंतिक को शिकस्त हो जाती, शैतान कामयाब हो जाता और इस्लाम का नाम तक बाकी नहीं रहता। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कयाम से उनका जो मकसद था वो इस्लाम की आबियारी था, इस्लाम के परचम को बुलंद करना था, लोगों को इस्लाम की दावत देना थी। जब ये कुरान को सर पर रखकर इमाम दोनों लश्करों के दरमियान आकर खड़े होकर उनको तालीम दे रहे थे, और हमारी आजादारी हमारी मजालिस इससे खाली होती चली जा रही है और ऐसे मबाइस और मौजूआत का इंतखाब हो रहा है कि जो लोगों के मसले नहीं। तो अब आजादारी के जरिए बस जिम्मेदारी आपकी है कि हर वो काम करना है कि जिससे इस्लाम बाकी रहे, इस्लाम का बोलबाला हो, उसकी तालीमात के अमली मज़ाहिर जिंदगियों में नजर आए। अगर ऐसा होगा तो फिर वाकयातन हम कहेंगे कि मुहर्रम का सही मानों में इस्तकबाल हो सकेगा और हम इमाम ज़माने के सामने कुछ कर कर उनकी खिदमत में पेश करने के काबिल हो सके। तो बातें अगरचे इसके अंदर बहुत ज्यादा थी लेकिन इतना वक्त अब हमारे पास नहीं बचा, और आप लोगों का एग्जाम और पेपर भी है, कोशिश कीजिएगा कि जल्दी जल्दी उसको भी मुकम्मल कर लिया जाए, और उसके बाद अय्याम अज़ा के बाद दोबारा फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन।
आइंदा नस्लों के पास जो दीन हमारे जरिए से जाए वो मुकम्मल दीन हो, मुकम्मल निजाम हो, ताकि आने वाली नस्लें जब वाकई मुसलमान बने तो मुसलमान तन्हा नमाज रोजे की मुसलमान ना हो, पूरी जिंदगी के आमाल के मुसलमान हो, जहाँ रहे वहाँ मुसलमान हो, अगर जमीन पर रहे तो मुसलमान, अगर फजा में परवाज करके चले जाए तो मुसलमान। ऐसा न हो कि जब तक जमीन पर रहें सज्दों पर सज्दे करते रहें और जैसे खुदा की बुलंदियों में चले जाएं, अब इतने ऊंचे हो गए कि गोया माज़ल्ला खुदा ही पस्त हो गया, अब वो काबिले सज्दा नहीं रह गया। ये दीन से नावाकिफियत का नतीजा है, मैं लफ्ज तो पहचानिएगा, ये दीन से बेखबरी का नतीजा है कि जमीन पर पैदल चलने वाले को सज्दे ज्यादा याद रहते हैं और फजा में परवाज करने वाला सज्दा भूल जाता है। मैंने एक दो न जाने कितनी मुसलमान एयरलाइनों से सफर किया है और सैकड़ों हजारों मुसलमान मेरे हम सफर रहे हैं, मैं तो साल भर तकरीबन सफर ही में रहता हूँ। इतने मुसलमान शायद कभी ऐसा मौका आ जाए कि जहाज में वक्त नमाज आए और आके निकल जाए और 50, 100, 200, 250, 300, 350 मुसाफिरों में कोई एक नमाज के लिखा हो सिवाय हज फ्लाइट के, पिछले का तो अल्लाह के घर जा रहे, पता नहीं पलट जाएंगे कि नहीं, लिहाजा अब तो शरीफ हो ही जाएंगे, अब तो बंदे खुदा हो ही जाएंगे, और वो भी बंदे खुदा क्यों हो जाते हैं वो भी याद रखिएगा। हज फ्लाइट में जहाँ जमातों की नमाजें दिखते हैं कुर्सियों के दरमियान, ये क्या जौके बंदगी है, ये क्या जौके इबादत है, क्या एहसास फर्क है? कुछ नहीं है, न जौके बंदगी न एहसास फर्क, फकत हिम्मत इसलिए बढ़ गई है कि सारा मजमा एक जैसा था, क्योंकि ख्याल ये है कि पहलू में कोई हिंदू नहीं है जो टोकरेगा, कोई ईसाई नहीं है जो मुस्कुरा देगा, कोई यहूदी नहीं है जो एतराज कर देगा। हज फ्लाइट में सभी तो हज करने वाले हैं, लेकिन हर हाजी साहब को दूसरे हाजी साहब से खतरा है। ये पढ़ के कहेंगे ये बेईमान कहे कि हज करने के वास्ते नमाज तक तो पढ़ी नहीं है, तो टोकने वाला पढ़ने पर कोई नहीं है न पढ़ने पर टोकने वाले, यानी अब भी अगर इन्होंने सज्दा किया है तो टोकने वाले का सज्दा किया है, पैदा करने वाले का सज्दा नहीं किया। मुसलमान में इस्लाम के बारे में इतना एहसास कमतरी पाया जाता हूँ कि खुदा के सामने सज्दा करने में घबराता हूँ कि बंदगाने खुदा हंसने दे, कई बंदगाने खुदा मुस्कुरा न दे, कई कोई बंदे खुदा एतराज न कर दे, और क्या उन मुसाफिरों का जिक्र है, छोड़िए उन मुसाफिरों की बात, मैं तो उस स्टाफ की गुफ्तगू कर रहा हूँ जिसे पूछा जाता किबला किधर है, क्या जब जहाज रुकेगा तो पढ़ लीजिएगा, क्या परेशानी हमले का वक्त नमाज चला जाएगी, हमारा तजुर्बा है वक्त नमाज चला जाएगा, आपकी नमाज से हमारी शरीर जिस तरह हो जाएगी, अगर किसी ने शराब मांग ली तो क्या होगा, अगर किसी ने सिगरेट का मुतालबा कर लिया हम कैसे पहुंचाएंगे बीच में, तो हम खड़े में नमाज पढ़ रहे, आपकी नमाज से मुसाफिरों के लिए जिस दर्दन होता है लिहाजा आपको इजाजत नहीं दी जा सकती है। ये सब मुसलमान हुकूमतों का, मुसलमान अवाम का, मुसलमान मुल्कों का, मुसलमान बंदगान खुदा का हाल है, और ये सब नतीजा इस बात का है कि इब्तिदा से इस्लाम आफाकी निजाम زندگی کا نظام نہیں بنا ہے، ابتدا فی اسلام مسجدوں کا نظام ہے، اسلام خانقاہوں کا نظام ہے، ورنہ اسلام اگر زندگی کا نظام ہوتا تو مسلمان جہاں رہتا اس کا وہی حال ہوتا۔ اور جب بات آئی ہے تو میں جملہ یاد دلانا چاہتا تھا، مسلمان جو پابند دین مسلمان ہے، جو ایماندار دیانتدار مسلمان ہے، اس کا یہ حال ہے کہ زمین پر چلے تو سجدہ خدا یاد رہے، اور فضا میں پرواز کرنے لگے 30,000 فٹ کی بلندی پر تو سجدہ پروردگار بھول جائے۔ اور یہ اس کا ماننے والا ہے جو مسجد الحرام میں رہے تو سجدہ کرے،
اللجن يا صاحب السماء.